ओम शांति। आज हम सबके बीच में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एक विशिष्ट व्यक्ति डॉक्टर श्रीमंत साहू जी, जो कि ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी काफी वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, वे हमारे सन्मुख उपस्थित हैं। हम सब दिल से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। राजयोगी डॉक्टर श्रीमंत साहू जी, आपने संबलपुर यूनिवर्सिटी से उड़ीसा से MBBS किया, तत्पश्चात आपने अन्नामलय यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से डिप्लोमा इन डायबिटोलॉजी किया है। 1991 से आपने समर्पित रूप से इस माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी संपूर्ण रूप से सेवाएं देने का जीवन का लक्ष्य बनाया। 1991 से आप अपनी सेवाएं ग्लोबल हॉस्पिटल में दे रहे हैं। इस ग्लोबल हॉस्पिटल में आपने अकेले ही विशेष 10 वर्षों से भी अधिक समय से डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया को संभाला है। वर्तमान समय में आप डायबिटीज पेशेंट्स पर अपना रिसर्च कर रहे हैं। ऐसी विशेष विभूति आज हम सबके सन्मुख हैं। हम सब आज का विषय स्वस्थ जीवन जीने की कला, इस विषय पर उनसे उनके उद्गार सुनेंगे। आपके लिए कुछ दो शब्द में कहना चाहूंगी, जरूरी नहीं कि सजदा हो हर वक्त, जरूरी नहीं कि सजदा हो हर वक्त और उसमें खुदा का नाम आए। आपकी जिंदगी तो खुद ही एक इबादत है, आपकी जिंदगी तो खुद ही एक इबादत है, शर्त ये है कि ये किसी के काम आए, ये किसी के काम आए। अपने जीवन का ये लक्ष्य लेकर के ही अपने जीवन को ईश्वरीय कार्य में समर्पित किया है। हम आपसे सुनते हैं आज स्वस्थ जीवन जीने की कला, डॉक्टर श्रीमंत साहू जी।
ओम शांति, गुड इवनिंग। आज इस प्रोग्राम का शायद अंतिम दिवस है। आप सभी हमारे भारत देश के किसी किसी कोने कोने से यहां पधारे हो और अरावली पर्वतमाला का ये जो वास्तव में माउंट आबू, मैं कहूंगा एक राजस्थान, समग्र राजस्थान में एक मरुद्यान है। यहां आते ही सारी दुनिया मनुष्य भूल जाता है। आप सभी को कैसा लगा? अच्छा लगा। देखिए, यहां सारे विश्व से लोग आते रहते हैं और आज मैं विशेष कलाकारों को देखकर दिल में बहुत खुशी है। मनुष्य जब कलाहीन हो जाता है, ऐसे कलाहीन मनुष्य को 16 कला संपन्न बनाने वाला सर्वोच्च कलाकार, उसकी श्रेष्ठ रचना ज्ञान सरोवर कला एकेडमी में आप सभी कला प्रेमी कलाकारों का बहुत ही दिल से स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। आइए, आप सभी को मैं आज का विषय वस्तु जो शेयर करूंगा, उससे पहले एक नम्र निवेदन करूंगा कि आप अपने अपने मोबाइल फोन कृपया स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड में रखें। देखिए, आज का विषय वस्तु हम चर्चा करेंगे द आर्ट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। विषय वस्तु चर्चा करने से पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछ सकता हूं, मनुष्य और पशु पंछी जानवरों में क्या अंतर है? मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी क्यों कहा गया है? मनुष्य के अंदर बहुत सारे गुण, विशेषताएं, कलाएं जो पशु पंछी जानवरों में नहीं देख सकते हैं। मनुष्य जब अपना संपूर्ण स्टेज में होता है, मनुष्य सबसे श्रेष्ठ स्थिति पर जब पहुंचता है, उसको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, अहिंसा परम धर्म इसका हो जाता है। परंतु कोई पशु पंछी जानवर को सोलकला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी या सर्वगुण संपन्न नहीं कहा जाता है। पशु पंछी जानवरों में भी कुछ ना कुछ कलाएं तो होती ही है, और जब कोई भी पशु पंछी अपनी कला को प्रदर्शन करते हैं बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। एक मोर जब पूरा पंख पसार कर जब नृत्य करता है कितना अच्छा लगता है, जब कोयल कू कू करता है कितना अच्छा लगता है। हर एक पशु पंछी के अंदर कुछ ना कुछ कला, कुछ ना कुछ विशेषता तो है ही, परंतु 16 कला संपूर्ण कोई पशु पंछी जानवर को नहीं कहा जाता है। तो वो 16 कला कौन सी है? आप सभी इतने दिन यहां बहुत सारी आध्यात्मिक बातें सुन चुके होंगे, तो 16 कलाएं कोई बता सकते हैं कौन सी? आप सभी कलाकार हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूं, बता सकते हैं? बता सकते हैं? सचमुच 16 कोई 1, 2, 3, 4 ऐसे गिनती में 16 नहीं है। जैसे देवताओं के जो गुण है सर्वगुण संपन्न कहा जाता है, सर्वगुण माने बहुत सारे गुण आ जाते हैं उसमें। आप हमारे विश्वविद्यालय में जब आएंगे आपको बताएंगे कि मनुष्य जब सर्वश्रेष्ठ देवता पद पर आसीन हो जाता है या वो देवोपम स्थिति पर पहुंच जाता है, उसके अंदर जो गुण होते हैं उसको दैवी गुण व डिवाइन वर्च्यूज कहते हैं। वो कम से कम 36 है, कम से कम 36, ऐसे तो बहुत सारे हैं, 56 गुण भी बताते हैं, जैसे अंतर्मुखता, अनुशासन, अथक, आज्ञाकारी, आत्मविश्वास, ईमानदारी, उदारता, गंभीरता, गुणग्राहकता, धैर्यता, नम्रता, निश्चिंतता, निर्भयता, नियमितता, न्यारापन, परोपकार, पवित्रता, स्फूर्ति, विवेकशील, रहम दिल, सुभावना, शालीनता, सत्यता, सत्कार, संतुष्टता, सहनशीलता, सहयोग, समर्पण, स्वच्छता, सादगी, साहस, हर्षित मुक्ता, हल्कापन, इतने सारे गुण। इसी प्रकार 16 कला संपन्न होना ऐसा 1, 2, 3, 4 जो बताया ऐसा कुछ वास्तव में नहीं है। जैसे पूर्णमासी चंद्रमा को आप देखते हो दिल गदगद हो उठता है, उस समय चंद्रमा को पूरा 100% फुल कहेंगे, उसमें कोई भी कला की कमी नहीं है। परंतु जैसे पूर्णिमा के बाद फिर प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, धीरे 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 साइज कम होते होते नाम के मात्र अमावस्या के दिन में आप देखेंगे चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। तो चंद्रमा जब पूरा फुल साइज में हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? 16 कला संपूर्ण। इसी प्रकार मनुष्य जीवन में जब हम सभी प्रकार की कलाओं से संपन्न हो जाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अगर उसको सुंदर गीत गाना भी आता हो, उसको नृत्य करना भी आता हो, बहुत सुंदर खेल भी खेलता है, बहुत सुंदर म्यूजिक भी बजाता है, और बहुत सुंदर पत्र भी लिखता है, बहुत सुंदर वक्तव्य भी वक्तृता भी देता है, सब प्रकार की कलाएं उसमें, जो भी आप सोच रहे हो, कोई भी व्यक्ति कुछ ऐसे प्रदर्शन करता है जो साधारण मनुष्य से हटकर कुछ ऐसी दिखाता है, करता है जो सबको अच्छा लगता है, उसको हम कला कहते हैं। तो इस प्रकार कोई मनुष्य के अंदर अगर सब प्रकार की विशेषताएं हो, सब प्रकार की खूबियां हो, उसको कहेंगे 16 कला संपूर्ण। तो जब मनुष्य सभी कलाहीन हो जाते हैं, स्वयं भगवान ऐसे कलाहीन मनुष्यों को, जैसे पशु पंछी जानवरों में कोई कला नहीं, ऐसे नाम के मात्र कला रह जाती है, तो ऐसे समय पर स्वयं परमात्मा जो सर्वोच्च कलाकार हैं, हम सभी को पुनः 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। और इन सभी कलाएं, जो भी जितनी सारी कलाएं आपको बताया, वो सब कलाओं में से एक बहुत सुंदर कला है स्वस्थ जीवन जीने की कला। अगर आपके अंदर वास्तव में कला हम सभी को खुशी देती है, हम सभी सुखी हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, परंतु आपके अंदर बहुत सारी कलाएं हो परंतु आप बीमार हो, अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? तो हर एक व्यक्ति चाहता है मैं जीवन में सदा निरोगी रहूं। तो सदा निरोगी रहना भी एक कला है। मनुष्य अपनी गलती से, अज्ञानता से ही वो बीमार होता है। तो मनुष्य जब उसको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, क्या खाना, क्या पीना, क्या जीना, क्या करना, सब उसको नॉलेज हो जाता है, तो वो जीवन में निरोगी बन जाता है, रोग मुक्त हो जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं एक सुंदर कला जिसको हम कहेंगे स्वस्थ जीवन जीने की कला। अगर बाकी कला ना भी हो परंतु आप अगर निरोगी रहते हो तो वास्तव में एक बहुत सुंदर विशेषता है, खूबी है, बहुत सुंदर कला आप में है। क्योंकि जीवन का सबसे पहला सुख है, हमारे शास्त्र में वर्णन है, निरोगी काया। अगर जीवन में सब कुछ आपके पास विशेषता हो, आप बहुत सुंदर गीत गाते हो, सुंदर रचना रचते हो, सुंदर डांस करते हो, लेकिन हमेशा बीमार हो, अच्छा लगेगा? खुद को भी मजा नहीं आएगा। तो जीवन में कोई व्यक्ति अगर सदा निरोगी रहता है, वास्तव में वो बहुत सुंदर कला जानता है। अगर आप निरोगी रहने की कला नहीं सीखे हो तो बाकी सारी कला फीका है, मैं कहूंगा। आज के जमाने में जब सारी मनुष्य दुनिया में कहीं भी जाइए, देखिए घर घर में जहां देखो सब बीमार है। मैं आज तक मेरी जिंदगी में ऐसा एक व्यक्ति नहीं देखा हूं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक तो कोई बीमारी नहीं होती होगी। ये कलयुग के अंत में जब चारों तरफ तमो प्रधानता है, प्रदूषण ही प्रदूषण है, जो भोजन खाते हैं प्रदूषित है, जो हवा लेते हैं प्रदूषित है, और जो पानी पीते हैं प्रदूषित है, तो कैसे कोई निरोगी रह सकता है? परंतु माउंट आबू में इस ग्लोबल जो एकेडमी है, आप इस ज्ञान सरोवर के प्रांगण में आप सभी जहां सब प्रकार के प्रदूषण से आप मुक्त हो, शहरी का कोई इलाका का कोई यहां शोरगुल नहीं, और वातावरण कितना शुद्ध आप देख रहे हो, यहां कितना अच्छा लग रहा है। तो जीवन में सदा स्वस्थ रहने के लिए वास्तव में क्या करना पड़ेगा, मैं आपके लिए एक सुंदर सौगात लेके आया हूं। जीवन में तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल है। आप सभी जानते हैं कौन सी तीन बातें, कौन सी तीन बातें? एक है हेल्थ, दूसरा है वेल्थ, तीसरा है हैप्पीनेस। हर एक मनुष्य ये तीन बातें जरूर चाहता है ना? नहीं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। परंतु ये तीनों में से अगर आपको मैं कहूंगा सबको सबसे प्रायोरिटी ज्यादा किसको देंगे आप? यस, डेफिनेटली आप हेल्थ कहेंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ होता है तो ही वो धन कमा सकता है। अगर स्वस्थ नहीं है, जो भी धन संपत्ति उसके पास है वो तो गंवाता है। और जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वही वास्तव में खुश रहता है सदा। अगर बीमार है तो कैसे खुश हो सकता है? तो अगर जीवन में तीनों की आवश्यकता है, स्वस्थ भी रहना जरूरी है, धन संपत्ति भी आवश्यक है। आजकल की दुनिया में पैसा के बिना तो कुछ कर नहीं सकते हो, परंतु साथ में जीवन में खुशी भी चाहिए। इसलिए लोग कई जगह पे जाके खर्चा करके भी कई प्रकार की कलाओं का अवलोकन करते हैं। कला देखते ही, किसी भी प्रकार का, चाहे संगीत कला, नृत्य कला, कोई भी कला देखते ही लोग खुश हो जाते हैं। तो खुशी सबको चाहिए, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे व्यक्तिगत रूप में भी खुशी चाहिए। तो ये तीनों में से लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा हेल्थ है। आप भी इसमें सहमत हो? और हमारे देश में प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनि उन्होंने भी रियलाइज किया था कि आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए भी जीवन में स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने उन दिनों में कोई हेल्थ क्लब, कोई जिम खाना तो था नहीं, उन दिनों में लोगों को हेल्दी रहने के लिए कई प्रकार के आसन, कई प्रकार के प्राणायाम आदि आदि सब शिक्षा देके गए थे और नियमित अभ्यास भी करते थे। और हमारे श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत शास्त्र आदि आदि पढ़ेंगे तो हमारा जो शरीर है, इस शरीर को क्या कहा गया है? इस शरीर एक रथ है, एक इनवेल्युएबल चैरियट है। शरीर को रथ कहा गया है और इसमें आप सभी को भी बताया गया होगा इस शरीर रूपी रथ में आत्मा क्या है? एक रथी है। शरीर अगर रथ है तो आत्मा एक रथी है, आत्मा रथवान है। तो आप महाभारत सभी सुने होंगे, देखे होंगे महाभारत सीरियल भी। ये जो चरित्र मैं दिखा रहा हूं, ये कैरेक्टर, ये कौन है बता सकते हैं? यस, आप सभी ने पहचाना, ठीक ही पहचाना, ये कर्ण है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि महाभारत में कर्ण के बारे में तो बहुत भूरी भूरी महिमा है, कर्ण जैसा महावीर कोई हो ही नहीं सकता है। और स्वयं भगवान भी कर्ण की बहुत महिमा किए थे। जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन तीर मार देता था तो कर्ण का रथ कई योजन तक पीछे हट जाता था, फिर कर्ण आता था, फिर युद्ध करता था, फिर अर्जुन तीर मार देता था, उसका रथ कहां पीछे चला जाता था, हट जाता था। लेकिन एक बार कर्ण एक तीर मारा और नंदीघोष रथ जहां स्वयं अर्जुन विराजित था वो रथ 10 कदम पीछे हट गया। तो भगवान कर्ण की भूरी भूरी महिमा किए कि अर्जुन कर्ण कितना महायोद्धा है, महावीर है, महारथी है, तो अर्जुन को सहा नहीं गया। अर्जुन ने कहा भगवान इसका रथ को मैं इतना बार पीछे हटा दिया, कितना जोजन पीछे हटा दिया, आप मेरी एक बार महिमा नहीं किए और मेरा रथ को सिर्फ 10 कदम हटा दिया, आप इसकी महिमा कर रहे हो। तो भगवान ने क्या कहा, क्या कहा भगवान ने कहा, ठीक ही बताया, भगवान ने कहा अरे अर्जुन एक कर्ण का रथ तो एक साधारण रथ है, लेकिन तू जिस रथ में विराजमान है नंदीघोष रथ, इस रथ में मैं स्वयं विराजित हूं, स्वयं मारुति ध्वजा पकड़ के इस रथ पर विराजमान है, 33 करोड़ देवता इस रथ में विराजित है, अगर ऐसा एक श्रेष्ठ रथ को अगर 10 कदम भी खिसका दिया वो महायोद्धा है या तू महायोद्धा है। तो मेरा कहने का मतलब है कर्ण ऐसा पराक्रमी था, ऐसे महावीर था, परंतु वो महाभारत युद्ध में हार गया दोस्तों, आप सभी जानते हो। किसलिए हारा, किसलिए हारा, क्यों हारा, नहीं आप देख लीजिएगा, आप नेक्स्ट देखे होंगे एपिसोड में कि उसका रथ का जो पहिया है ये धरती पर धस गया था, और उस वक्त कर्ण अर्जुन को कहता है हे अर्जुन मुझे कुछ वक्त दो, मैं मेरा रथ को निकालता हूं फिर हम लड़ेंगे। अर्जुन तुझे मैं युद्ध की रणनीति सुनाता हूं, सुन, जब कोई आपका शत्रु कोई विवश है, परवश है और उसका रथ ऐसे ठीक जगह पे नहीं है, ऐसे समय पर उसको आक्रमण नहीं करना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, बहुत सारे रणनीति का सब पॉइंट्स बताया। परंतु उस समय भगवान ने कहा, ये तो कहानी है, उस समय भगवान ने कहा अर्जुन ये कर्ण तुझे रणनीति सिखा रहा है, जब तेरा अभिमन्यु को 7 महारथी एक ही साथ घेराव करके मारे ये कौन सा रणनीति है, जब सारी भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण किया जा रहा था ये सभी विराजित थे उधर, ये कौन सा रणनीति है, ये तुझे धर्म का ज्ञान सिखा रहा है, रणनीति सिखा रहा है, मार इस वक्त। और उसी समय ही अर्जुन उसको मार दिया, जिसके कारण अर्जुन विजयी बन गया। मेरा कहने का भावार्थ यही है दोस्तों कि जीवन में आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन ये शरीर रूपी रथ अगर आपका पंक्चर्ड है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो जिंदगी में, आप कभी भी जीत नहीं सकते हो जीवन संग्राम में, जीवन के हर कदम में सफलता अगर चाहिए तो ये शरीर भी मजबूत चाहिए, ऐसे नंदीघोष जैसा रथ जैसा शक्तिशाली चाहिए। तो जीवन में स्वस्थ रहना कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी समझ सकते हो, परंतु एक बात है, एक विडंबना है कि आज दुनिया में किसी को भी अगर पूछो स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ क्या है, लोगों की कई प्रकार के उत्तर आते हैं। मेरे पास तो आप सुन के हंसी आएगी आपको, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं इतने इतने मोटे, तो मैं पूछता हूं भाई जी थोड़ा ध्यान तो रखो क्यों इतना, आपका स्वास्थ्य को देखो, थोड़ा शरीर देखो कैसे हो आप, तो क्या उत्तर मिलता है, नहीं डॉक्टर साहब अभी तो मैं फिर भी ठीक हूं, पहले तो और हेल्दी था। अर्थात जो जितना मोटा उतना हेल्दी है क्या? मैं पूछता हूं आपके घर में भी सभी मोटे हैं क्या? कहते हां मेरे जैसा हेल्दी है सभी। तो वास्तव में मोटापा को हेल्दी नहीं कहा जाता है, ओबेसिटी इज अ डिजीज, इट इज द रूट कॉज ऑफ, इट इज अ मदर ऑफ सो मेनी डिजीजेस। जो मोटा होता है उसी को ही डायबिटीज होता है, उसी को ही हाई कोलेस्ट्रॉल होगा, थायराइड आएगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, मैं आपको 1000 डिजीज गिनती करके बता सकता हूं कि मोटापा सारी बीमारियों का जड़ है। और हमारे देश में कोई मोटे नहीं थे, ये थोड़े साल के अंदर ही हमारे जीवन शैली में बहुत एक परिवर्तन आ चुका है जिसके कारण हम सभी ये हालत है। हमारे भारतवर्ष में आज 60% 50% लोग मोटे होते जा रहे हैं, अमेरिका में 60% लोग मोटे हो गए हैं, जिसके लिए बहुत बड़ी चिंता है उनको, और हम भारत में हम क्यों पीछे रहे, अमेरिका से आगे जाना चाहिए ना। तो व्हाट इज हेल्थ, वास्तव में आप अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संस्थान की परिभाषा सुनेंगे, WHO का कहना है ए स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग फिजिकल मेंटल सोशियल एंड स्पिरिचुअल। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रीति से मानसिक रीति से सामाजिक रीति से आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ है तो वही व्यक्ति वास्तव में संपूर्ण स्वस्थ है, स्वस्थ है। तो संपूर्ण स्वास्थ्य की कंप्लीट हेल्थ की परिभाषा यही है, इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग, नॉट ओनली डिजीज और इन्फर्मिटी, नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, बट इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग, फिजिकल, मेंटल, सोशियल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो देखिए, व्हाट इज फिजिकल हेल्थ, हम सभी जानते हैं, कोई व्यक्ति को खाली बाहर से बहुत सुंदर मस्कुलर है, बहुत एकदम गोरा है, तो उसको फिजिकली हेल्दी नहीं कहेंगे। वास्तव में फिजिकली हेल्दी वो व्यक्ति है जो भाग दौड़ कर सकता है बिना हाँ पे। आज देखना, दिखेंगे हट्टा कट्टा ऐसा, थोड़ा दूर चलो कहेंगे हाँ, हाँ, एक सीढ़ी चढ़ने में भी हाँ हाँ करते रहेंगे, तो उसको हेल्दी थोड़ी कहेंगे। जो भाग दौड़ कर सकता है, जो बहुत जो भी खाता है उसको सही सलामत हजम होता है, या अच्छी नींद आती है उसको, और साथ में उसका ब्लड प्रेशर ठीक है, उसका वजन सही सलामत है, उसको कोई भी प्रकार का बुखार नहीं है, उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, ये सब फिजिकल पैरामीटर्स है, इसके आधार से हम किसी को स्वस्थ हैं या बीमार हैं हम फिजिकली कह सकते हैं। इसी प्रकार मेंटली हेल्दी कौन है, मेंटली कौन सा व्यक्ति हेल्दी कहेंगे, इसके भी कुछ पैरामीटर्स है। जो व्यक्ति अपना परिवार का उत्तरदायित्व को समझता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है, परिवार के जो भी काम उसको जो भी है वो सारा निभाता है, समाज में सबके साथ मिलजुल के रहता है, सबके साथ सहयोग देता है, सहयोग लेता है, और सारे दिन में उसका कोई भी मूड स्विंग नहीं होता है। जैसे कई लोग एकदम अभी अभी देखो तो एकदम गुस्सा एग्रेसिव, अभी अभी देखो तो एकदम डिप्रेस्ड, अभी अभी देखो तो एकदम खुशी में एकदम नाच रहे हैं, अभी अभी देखो तो रो रहे हैं, इसको मेंटल स्विंग्स कहते हैं। जो व्यक्ति वास्तव में हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को, हर समस्या को समझते हुए अकॉर्डिंगली मेंटली वो बिहेव करता है, उसको मेंटली हेल्दी कहेंगे। आप एक दुख का माहौल है, किसी के घर में कोई डेथ हो गया है, आप जाके वहां चुटकुला सुना रहे हो, उसे जाके हंस रहे हो, मेंटली हेल्दी कहेंगे नहीं। जिस परिवेश में, जैसा माहौल है, जैसे हैं हम, कैसे उस सब समय कैसे बिहेव करना चाहिए, जो व्यक्ति सही जानता है वो वास्तव में मेंटली हेल्दी है। और इसी प्रकार सोशली हेल्दी कौन है, सामाजिक रीति से हेल्दी कौन है, जो व्यक्ति वास्तव में समाज में रहकर बच्चों से लेकर बूढ़े तक सबका ध्यान देता है, सबके साथ मिलजुल के रहता है, सबको सहयोग देता है, सहयोग लेता है, पर्यावरण का भी ध्यान देता है। लोग घर में सफाई करेंगे, घर की सारी अच्छी तरह सफाई करेंगे, सारे सब कुछ किचड़ा लेके कहां, रोड में, कौन सफाई करेगा, कौन करेगा, सारे नाले पर नाले सारे पूरा सामने जाएगा, बदबू मारता रहेगा नहीं। हम जहां रहते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारे परिवेश, प्रकृति, पेड़ पौधे, इसका भी हम ध्यान दें। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, वो अकेले नहीं रह सकता है, सबके साथ अगर मिलजुल के हम रहते हैं, सबके साथ प्रेम प्यार बांटते हैं, खुशी से रहते हैं, सहयोग देते हैं, सहयोग लेते हैं, बच्चे बूढ़े सबसे मिलके रहते हैं, तो हम कहेंगे सोशली हेल्दी। परंतु आध्यात्मिक रीति से कौन हेल्दी है, आप किसी को भी पूछिए। मैं एक डॉक्टर होने के नाते भी मुझे पता नहीं था, मैं जब ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में आया, मुझे आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या है पता चला। मैं जब फर्स्ट, आज से 30 साल पहले जब फर्स्ट आया था यहां, हमारी दादी प्रकाश मणि जी थी, वो मुख्य प्रशासिका, उन्होंने कहा डॉक्टर यू हैव टू बिकम ए डबल डॉक्टर, आपको एक डबल डॉक्टर बनना है। मैं समझ नहीं पाया, दादी ने कहा, दादी को पूछा कि दादी डबल डॉक्टर माने क्या मतलब, मैं बोला, दादी ने कहा कि आप तो शारीरिक बीमारियों को ठीक करते ही हो, फिजिकल डॉक्टर तो हो ही, परंतु अभी आपको स्पिरिचुअल डॉक्टर बनना है, क्योंकि आज इसकी आवश्यकता है। स्पिरिचुअल डॉक्टर किसे कहा जाता है, शारीरिक बीमारियों को तो आप जानते हो, लेकिन स्पिरिट की बीमारी क्या है आपको नहीं पता है। मैं आपको एक हंसी की बात सुनाता हूं, शेयर करता हूं। मेरे पास हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल में एक आयुर्वेदाचार्य आए थे, उनको हार्निया था, ऑपरेशन कराने के लिए आए थे। बहन जी ने मेरा संपूर्ण परिचय नहीं बताया, वास्तव में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मैं एनेस्थेसिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूं, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री एंड डिप्लोमा डायबिटोलॉजी में किया हूं। और जब वो आए थे ऑपरेशन कराने के लिए, मैं एनेस्थेटिस्ट भी हूं, तो जब उनको चेकअप कराने के लिए गया, देखा, उन्होंने कहा डू यू नो डॉक्टर, वंस अपन अ टाइम आई वॉज द फिजिशियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैं हमारे भारतवर्ष का प्रेसिडेंट का भी फिजिशियन रहा हूं, हमारे आयुर्वेद में ऐसा दवाई नहीं जो दवाई से जो कुछ भी बीमारी आप कह दो सारी बीमारियों का इलाज आयुर्वेद में है। मैं देखा बहुत कुछ बोल रहे हैं, मैं समझ गया। मैं उनको बोला कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात है, लेकिन बचपन से ना मुझे एक बीमारी है, वो बीमारी कितना प्रयास कर चुका हूं ठीक नहीं हो रही है, बहुत दवाई भी कर चुका हूं ठीक नहीं हो रहे, आपके आयुर्वेद में है, अब बताओ ना बताओ जल्दी, अब भी लिख देता हूं दवाई। मैं बोला कि डॉक्टर साहब देखो मैं बचपन से मुझे वो बीमारी है, नहीं ठीक हो पा रहा है। बोला ना आप बताओ क्या बीमारी है, मैं अभी लिख देता हूं दवाई, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं बोला डॉक्टर साहब मुझे ना बहुत छोटी छोटी बातों में बड़ा गुस्सा आता है, मैं इस बीमारी से नहीं मुक्त हो पा रहा हूं। तो मुझे देखते रह गए, हंस के कहते तो आपने तो छक्का मार दिया। तो बीमारी खाली बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, निमोनिया हो गया, ये तो बीमारी है, ये शारीरिक बीमारियां हैं, परंतु गुस्सा करना भी बीमारी क्या? आप सोचते हो कि समझते हो कि बीमारी है? जो सोचते ये हाथ उठाइए। अच्छा, जो सोचते हैं गुस्सा करना बीमारी नहीं है हाथ उठाइए। अच्छा, कोई नहीं। अच्छा, आप सोच रहे हो गुस्सा करना बीमारी नहीं है? अच्छा, आपको पता है आप जब गुस्सा करते हो तो ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जब गुस्सा करते हो एकदम चेहरा लाल पीला हो जाता है, आपका हार्ट का धड़कन एकदम तेज हो जाता है, और आपके शरीर में कितने टर्न्स एंड टर्न्स ऑफ एड्रेनलिन्स कैटेकोलामिन्स नॉरएड्रेनल सब सीक्रेट होता है, आपका शुगर बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ बढ़ जाएगा, और जिसको हार्ट का थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा अगर गुस्सा किया हार्ट अटैक सडन कलाप्स। तो गुस्सा से कितने बीमारियां होती है आपको पता नहीं है। आप एक व्यक्ति सिगरेट पीता है तो उसके जो हार्ट के नस है उसके एंडोथेलियम कहते हैं उसके अंदर जो उसका असर होता है आधा घंटा तक असर होता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है और हार्ट उसको ब्लॉक कर देता है तो हार्ट अटैक होता है। सिगरेट एक पॉप लेने से आधा घंटा असर रहता है, लेकिन एक बार आपने गुस्सा किया तो 30 दिन तक असर रहेगा, 30 दिन तक। तो सिगरेट से भी कितना नुकसानकारक है आप सोच लीजिए। तो हम सोचते हैं बुखार हो जाना और कुछ होना वो बीमारियां हैं, लेकिन गुस्सा करना बीमारी नहीं सोचते हैं। लेकिन गुस्सा करने से ही आपको एसिडिटी होगी, आपको बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, तो वो बीमारियों का तो जन्मदाता है, तो कैसे बीमारी नहीं है? मेरा कहने का मतलब है कि स्पिरिचुअल डिजीज क्या है लोगों को पता नहीं है। तो स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए एक व्यक्ति अगर सदा शांत रहता है, खुश रहता है, किसी से गुस्सा नहीं करता है, वैर विरोध नहीं है, बहुत एकदम बहुत खुश मिजाज रहता है, वही स्पिरिचुअली हेल्दी है। सबके साथ भाईचारा करके रहता है, सबके साथ प्रेम भाव रहता है, वही स्पिरिचुअली हेल्दी है। और आप सभी यहां जो आए हो, ये हमारी एक हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है, यहां ये एक स्पिरिचुअल हॉस्पिटल भी है, यहां स्पिरिचुअल बीमारियों का इलाज किया जाता है। हमारे बहनें सब एक एक एमडी एमएस है। दुनिया में जो डॉक्टर्स होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेते हैं वो सब एमडी एमएस लिखते हैं। एमएस माना जानते हो क्या है? मास्टर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और एमडी माने क्या है? डॉक्टर ऑफ मेडिटेशन। तो मेडिटेशन सिखा के, स्पिरिचुअलिटी सिखा के आप सभी को सदा के लिए स्पिरिचुअली हेल्दी बनाने के लिए हमारी बहनें यहां सेवा करते हैं। ये सब एक एक डॉक्टर है, ये सुप्रीम डॉक्टर के बच्चे, मास्टर सुप्रीम डॉक्टर्स है। तो स्पिरिचुअल हेल्दी कौन है? जो व्यक्ति अपने आप को स्पिरिट समझता है, एक आत्मा समझता है, हम उसको इंग्लिश में स्पिरिट कह देते हैं, सोल कह देते हैं, हिंदी में उसको आत्मा कह देते हैं, कोई रूह कह देता है, कोई और क्या कह देता है। तो हम सभी एक एक आत्मा है जो अपने आप को सोचता है, और दुनिया में हर एक व्यक्ति को भी आत्मिक नजर से देखता है, आत्मिक दृष्टि से देखता है। हम है पंछी एक डाल के, रंग बिरंगी सब कलर ड्रेस पहने हैं, परंतु हम सब ईश्वर की संतान है। ये संसार एक वसुधैव कुटुंबकम है, हम कहते हैं संसार कुटुंब है, परंतु कैसे कुटुंब है? क्योंकि हम एक ईश्वर पिता की संतान है, आपस में भाई भाई है। तो जो व्यक्ति स्वयं को आत्मा समझता है, हर एक को आत्मिक नजर से देखता है, ये संसार को एक कुटुंब समझता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई समझता है, वो दृष्टिकोण रखता है, पिता परमात्मा की याद में रहता है, सदा विश्व कल्याण की भावना रखता है, ऐसे व्यक्ति को स्पिरिचुअली हेल्दी कहा जाता है। और जब डॉक्टर ऐसे स्पिरिचुअली हेल्दी हो जाते हैं, पेशेंट भी ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअली हेल्दी हो जाएगा। और जो व्यक्ति स्पिरिचुअली हेल्दी हो जाएगा, मैं आपको आई कैन एश्योर यू कि ही विल बिकम फिजिकली मेंटली सोशली ही विल बी हेल्दी। जो आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ है उसका मन सदा शांत खुश रहेगा, तो नेचुरली वो मेंटली हेल्दी हो जाएगा। जो मेंटली हेल्दी होगा, डॉक्टर्स कहते हैं 90% से ज्यादा डिजीज साइकोसोमेटिक है, यहां से शुरू होता है, तो फिजिकली हेल्दी हो जाएगा। और जो सबके साथ भाईचारा होकर रहेगा तो सोशली भी हेल्दी हो जाएगा। तो व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? तो प्रश्न उठता है कि स्वास्थ्य की सही परिभाषा क्या है, क्योंकि आज लोगों में बहुत गलत फहमी है। स्वास्थ्य शब्द वास्तव में हिंदी का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो स्व प्लस स्थ इज स्वास्थ्य। जो स्वस्थिति में स्थित रहता है वही वास्तव में स्वस्थ है। स्वस्थिति क्या है? आपको बताया था हम सभी एक एक आत्मा है, हम सभी के कुछ अनादि गुण है, जो नेचुरल गुण है, जो इनहेरेंट क्वालिटीज है, अपने निजी गुण है। जैसे आप देखिए चुंबक का निजी गुण है लोहे को अपने तरफ खींचना, और निजी गुण है। इसी प्रकार हम सभी जो आत्माएं हैं हम सभी के कुछ निजी गुण है, वो निजी गुण को अनादि गुण कहा जाता है। और जब बाद में हम ये संसार में आते हैं, यहां देवता रूप में सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपन्न रूप में पाठ बजाते हैं, अभिनय करते हैं, उस समय हमारे जो गुण है उसको आदि गुण व दैवी गुण कहा जाता है। वो आपको बताया था 56 है, परंतु हमारे ओरिजिनल क्वालिटी जो है, इनहेरेंट क्वालिटी जो है वो सात है। वो है ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। ये सातों गुणों से जब हम संपन्न हो जाते हैं ऐसे समय में हम सभी को सतोगुणी अवस्था हमारी होती है। और किसने कहा है द ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट पिक्चर ऑफ द ह्यूमन सोल। जिसकी आत्मा जितनी अच्छी होती है, सतोप्रधान होती है, उसका शरीर भी उतना निरोगी अच्छा सतोप्रधान हो जाता है। तो आत्मा जब ये गुणों से वंचित हो जाती है तो शरीर भी बीमार, अनेक प्रकार के रोगों से घिरा हुआ रहता है। तो हमारी आत्मा में जब ये सब गुण आ जाएंगे, अर्थात स्पिरिचुअली हम हेल्दी हो जाएंगे, ये शरीर भी ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएगा। देखिए कैसे गहरा रिलेशन है इस सारे सातों गुणों का, हमारे शरीर के कई सिस्टम्स के साथ कैसा गहरा संबंध है मैं आपको दिखाता हूं। जो व्यक्ति देखिए ज्ञान से संपन्न हो जाता है उसके नर्वस सिस्टम बिल्कुल एक्यूरेटली फंक्शन करते हैं, बहुत अच्छा होता है। कुछ एज के बाद, 60 साल के बाद, यहां जो भी थोड़े से वयोज्येष्ठ बड़े वयस्क सारे बैठे हैं सभी अनुभव करते होंगे, 60 साल के बाद आदमी भूल जाता है अक्सर करके, भूलने का बहुत उनको प्रॉब्लम होता है। परंतु हमारे देश, हमारे जो विश्वविद्यालय है, हमारी दादी जानकी जी जो मुख्य प्रशासिका वर्तमान है, उनका उम्र कितना है जानते हैं? ओनली 98 ईयर्स। और आज मैं देखता हूं वो पिछले 50 साल की बात ऐसी बताती है जैसे कल की बात है, कोई भी आता तो फट से पहचानती है और हजारों लोगों के सामने घंटों तक भाषण करती है। आज भी सवेरे सवेरे उठ के लैपटॉप में ईमेल सर्फ करती है, जवाब देती है, सारे वर्ल्ड ट्रैवल करती है 98 ईयर्स में। हाउ इट इज पॉसिबल? तो जो क्योंकि वो सारा दिन ज्ञान का मनन चिंतन करती रहती है। आप पूछो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 10 पॉइंट, फटाफट बताएगी। वो खाली नहीं रहती है, उस मनन चिंतन चलता ही रहता है, जिसके कारण उनका नर्वस सिस्टम इतना सुंदर है। इसी प्रकार आप देखिए जो प्यूरिटी जीवन में जो पवित्रता को धारण करता है उसके 5 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां वो भी एकदम बहुत शीतल, शांत, बहुत सुंदर हो जाते हैं। आज मनुष्य इंद्रियों का गुलाम है, 6 फुट का आदमी लेकिन 2 इंच जवान का गुलाम है, सिगरेट पिए बिना रह नहीं सकता है, उसको कैंसर से लेके क्या क्या बीमारियां हैं। तो हम इंद्रियों के जब गुलाम हो जाते हैं तो हम दुखी होते हैं, बीमारियों को इन्वाइट करते हैं। जो व्यक्ति पवित्रता जीवन में धारण करता है, अर्थात आत्मा का जो निजी गुण है, मूल गुण है, पवित्र स्वरूप हो जाता है, उसके सारे कर्मेंद्रियां अपने बस में हो जाते हैं, वो भी प्योर हो जाते हैं। इस प्रकार जब आप पीसफुल हो जाते हो, जब एकदम शांति से बैठे हो, देखना आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका सांस बिल्कुल एकदम स्लो, धीमी धीमी हो जाएगा। और बहुत सारी रिसर्च है जिसकी सांस बहुत धीमी धीमी रहता है वो बहुत सारी बीमारियों से मुक्त हो सकता है। आज जो व्यक्ति गुस्सा करता है आप देखना एकदम पूरा कितना तेज सांस हो जाता है। आप सभी सुने होंगे बहुत सारे साधु संत सिखाते हैं कि प्राणायाम करो, अपने सांस को रोको, सांस को कंट्रोल करोगे तो गुस्सा नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, जब आप गुस्सा करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके सांस तेज हो जाते हैं, है ना? नहीं, आपको करना नहीं पड़ता है, आप जब गुस्सा करते हो एकदम देख लूंगा इसको क्या सोच के रखा है, एकदम सांस एकदम तेज हो जाता है। लेकिन आप सांस को तेज करने से गुस्सा आएगा आपको, आएगा नहीं आएगा? तो कौन किसको कंट्रोल करता है? गुस्सा सांस को कंट्रोल करता है कि सांस गुस्सा को कंट्रोल करता है? गुस्सा सांस को कंट्रोल करता है। आपको गुस्सा आता है तो ही सांस ऐसा होता है। तो जो व्यक्ति पीसफुल रहता है ऑटोमेटिकली सांस कंट्रोल हो जाएगा, सांस को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है। तो आत्मा जब पीसफुल स्टेज में होती है उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत सुंदर हो जाता है। इस प्रकार जब आप प्यार से भरपूर हो जाओगे आपका दिल बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप सभी का दिल है दिल? आप दिल वाले हो? सभी के पास दिल है। तो देखिए जो विशाल दिल होता है, उदार दिल होता है, उसको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। जो दूसरे के प्रति ईर्ष्या, बदला लेने की भावना, अनेक प्रकार की कड़वापन रखता है दिल में, उसको हार्ट अटैक होता है। तो आपका लव, प्यार के साथ देखिए इसका कितना बड़ा रिलेशन है। इसलिए प्यार का सिंबल क्या देते हैं ऑलवेज, कोई किडनी को नहीं दिखाता है कि और कोई और ब्रेन को नहीं दिखाता है, प्यार का सिंबल क्या दिखाया जाता है? हार्ट। तो जो प्रेम से भरपूर हो जाता है उसके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एकदम सुंदर हो जाता है। इस प्रकार देखिए जो सदा खुश रहता है उसको कभी भी एसिडिटी नहीं होगी, अल्सर नहीं होगा, पेट में घाव नहीं होगा। आज हम एंडोस्कोपी करके देखते हैं पेट में कैसे कैसे घाव हो जाता है, ब्लीडिंग होती है, उल्टियां होती है, एसिडिटी होती है, डॉक्टर साहब गैस बनता है, बहुत छाती जलता रहता है, क्यों ऐसा? जो व्यक्ति टेंशन में रहता है, दुख है जीवन में, उसको एसिडिटी होती है। जो व्यक्ति सदा खुश रहता है एसिडिटी होगी नहीं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार ब्लिस माना आनंद, जो व्यक्ति आनंदित रहता है सदा ही एक्सट्रीम हैप्पीनेस ब्लिसफुल स्टेज में रहता है, उसके एंडोक्राइन सिस्टम और सारे बॉडी रेजिस्टेंस, बॉडी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है, उसको कोई भी बीमारी इन्फेक्शन आदि होगी ही नहीं। और जो मेडिटेशन करता है, हमारे देश में जितने भी योगी हैं आप देखना उनका नाम सब बदल देते हैं, आनंद शब्द से जोड़ देते हैं, शिवानंद, दयानंद, चिदानंद, विवेकानंद, सब आनंद ही आनंद। जो आनंदित हो जाता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो स्पिरिचुअली इफ यू बिकम ब्लिसफुल, नेचुरली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कभी खराब हो ही नहीं सकता है। और इसी प्रकार जब यू आर बिकम पावरफुल, योर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ऑल्सो बिकम पावरफुल। जो व्यक्ति मन से शक्तिशाली है वो क्या नहीं कर सकता है? जो व्यक्ति मन से कमजोर है कितना भी मस्कुलर हो बोला कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो आत्मा जब इस सातों गुणों से संपन्न हो जाती है, सतोगुणी हो जाती है, उसके बॉडी के एक एक सिस्टम देखो कितना सुंदर हो जाता है। तो फिजिकली ही बिकम्स हेल्दी। सो स्पिरिचुअल हेल्थ इज द फाउंडेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। डू यू एग्री? यस यस, थैंक यू। तो मेरा कहने का मतलब है हमारे देश में आज सारे विश्व में जो लोगों को इतनी बीमारियां हो रही है, आज स्पिरिचुअल हेल्थ की कमी है। अगर लोग स्पिरिचुअली हेल्दी हो जाएं सभी, हम सभी इस सब बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, यहां स्पिरिचुअली कैसे एम्पावर किया जाता है सभी को स्पिरिचुअली हेल्दी रहने के लिए, हमारी बहनें वो ट्रेनिंग देते हैं। आप सभी इधर इसलिए आए हो कि स्पिरिचुअल हेल्थ क्या समझो और स्पिरिचुअली हेल्दी रहो। देखो यू विल बी मेंटली, फिजिकली, सोशली यू विल बी हेल्दी, ठीक है? आज दुनिया में बहुत बड़ी एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। पिछले 40-50 साल के अंदर ही कुछ बीमारियां बहुत तेज गति से बढ़ती जा रही है और इसके चपेट में हर घर घर में एक एक व्यक्ति उसके चपेट में आ रहे हैं। और वो सब है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, अर्थात जो एक दूसरे को फैलने वाली बीमारी नहीं। कुछ बीमारियां होती है एक दूसरे को फैलती है, मलेरिया, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा, प्लेग, ये सब बीमारी एक दूसरे को फैलती है। आज वो बीमारियां काफी हद तक कम हो चुकी है, हमारे पास एंटीबायोटिक्स है, हमारे पास इम्यूनाइजेशन है, हम ये बीमारियों को रोक चुके हैं। परंतु आज कुछ बीमारियां बहुत तेज गति से बढ़ रही है, वो बीमारियां एक दूसरे को फैलने वाली बीमारी नहीं है, वो बीमारियों का जड़ हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी की अभी कमी है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करें ये बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। और वो बीमारियां है डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, कैंसर, स्ट्रोक, जिसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। तो देखिए आज सारे वर्ल्ड में 38.5 करोड़ लोगों को डायबिटीज हो गया है, 38.5 करोड़। और हर साल 1 करोड़ उसमें शामिल होते जा रहे हैं। हमारे देश में हर साल 10 लाख लोगों का मौत हो रहा है डायबिटीज के कारण। हर साल एक साल में 10 लाख लोग मर रहे हैं। आप सोचिए कितनी गंभीर समस्या है। और ये शहरी इलाका में सर्वे करके देखा गया है 50% माताओं को हाई ब्लड प्रेशर हो गया है। 50% ये सब अखबार का कटपीस आपको दिखा रहा हूं, ये मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सब जो स्टैटिस्टिक्स है सभी जानते हैं जो बता रहा हूं। लेकिन हम सभी क्यों बीमार हैं, क्यों ऐसा हो रहा है आज समाज में? मैं जब आज से 40 साल पहले मैं बता रहा हूं, जब मेडिकल कॉलेज के हम स्टूडेंट थे उस समय हमारे प्रोफेसर सब मेडिसिन कहते थे डायबिटीज तो 100 में से किसी एक को होता है, लेकिन आज घर घर में हो गया है। 25-30% लोगों को डायबिटीज हो गया है। 25-30%, आप सोचिए तो सही क्या हालत है। तो कहां 1% कहां 30-40 साल के अंदर एकदम 30 गुना बढ़ गया। तो ये बीमारी जिस गति से बढ़ती जा रही है इसका मेन कारण क्या है? पुअर हेल्थ इज डायरेक्टली लिंक्ड टू आवर डाइट एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस। हम क्या खा रहे हैं, हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, उस पर ही सारा मदार है, सारा आधारित है। आप देख रहे हैं चित्र में क्या देख रहे हैं, मोटू राम कहां बैठ के खा रहा है? इडियट बॉक्स के सामने। इसको मैं टीवी नहीं कहता हूं, इसको इडियट बॉक्स कहता हूं। क्योंकि आदमी जब टीवी के सामने बैठ के खाता है वो कितना निगल जाता है, कितना खा जाता है, उसको खुद को सुधबुध नहीं देता है। तो क्या होगा, मोटा होगा ना? नहीं। तो कहने का मतलब है आज हमारी जीवन शैली बहुत गलत हो चुकी है। और मन में प्रश्न उठता है तो ये जीवन शैली क्या होता है, व्हाट इज लाइफ स्टाइल? आप मन में प्रश्न उठ सकता है आपका। वास्तव में जीवन शैली वो है सवेरे से लेकर रात तक हम जिस प्रकार का जीवन जीते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे उठते हैं, क्या करते हैं, इसको हम जीवन शैली कहते हैं। तो आज मनुष्य की जीवन शैली कैसे हो चुकी है देख लीजिएगा। है साधु बाबा लेकिन क्या कर रहे हैं, एक हाथ में, दूसरे हाथ में क्या देख रहे हैं, सिगरेट। दिस इज द चेंजिंग लाइफस्टाइल। इस प्रकार एक हाथ में रिमोट कंट्रोल, दूसरे हाथ में क्या देख रहे हो, कितना पॉपकॉर्न, और खुद पॉपकॉर्न जैसे भी बन गई है। और क्या देख रहे हो आप, क्या देख रहे हो, हम कहां सो रहे हैं, हमारे रिमोट कंट्रोल कहां है? आज हम सभी हेल्थ कॉन्शियस तो बन गए हैं। आप शहरी इलाके में जाओ आप देखना, वहां लोग सब जिम खाना में, फिटनेस सेंटर में जाते हैं फिट होने के लिए। मैं अभी अभी कुछ महीने पहले बॉम्बे गया था, वहां जुहू भिले पार्ले एरिया में एक जिम खाना है, जुहू जिम खाना। वो जिम खाना नाम बहुत पुराने नाम दिया गया है, पहले से ही दिया गया था वही नाम है, परंतु वो एक 5-स्टार होटल से कम नहीं है कुछ। और उसका जो मेंबरशिप फीस है कितना जानते हैं, बताइए कितना हो सकता है? 25 लाख सिर्फ मेंबरशिप, 25 लाख। एक व्यक्ति अगर उसका वो जिम खाना का मेंबर बनना चाहता है तो 25 लाख पहले देना पड़ेगा, हर महीना का फिर अलग और कुछ कुछ है। लोग पैसा तो खर्च करते हैं, जाते हैं हेल्थ फिट रहने के लिए, लेकिन सीढ़ियां कोई नहीं चढ़ता है। ये बगल में जो एयरपोर्ट में आप देखते हो ना, एस्कालेटर कहते हैं, खड़े हो जाने से क्यों उठ जाएगा ऊपर, तो एस्कालेटर में जा रहे हैं। देखिए मैं बॉम्बे में प्रैक्टिकली देखा हूं, लोग सवेरे सवेरे वॉकिंग करने के लिए निकलते हैं, लेकिन किसको वॉकिंग करा रहे हैं, किसकी वॉकिंग हो रही है? सो दीज आर द अनहेल्दी हैबिट्स। ये सब वास्तव में जिसके कारण आज हमारे बच्चे कैसे हैं आप देख लीजिए, और हम सभी कैसे बन गए हैं, जो गलत जीवन जी रहे हैं, जो गलत जीवन शैली के कारण आज हमारी ये दुरावस्था है। सो लाइफ प्लस स्टाइल इज कॉल्ड लाइफ स्टाइल। जिस प्रकार के जीवन हम जी रहे हैं ये बहुत गलत हो चुकी है, और इसलिए आज 5 बीमारियां बहुत तेज गति से बढ़ती जा रही है, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हार्ट की बीमारी, कैंसर। ये 5ों को हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक प्रश्न पूछूं, जिन भाई बहनों को आपको हाई ब्लड प्रेशर है हाथ उठाओ, देखो आप में से कईयों को है। अच्छा, जिन भाई बहनों को डायबिटीज है हाथ उठाओ, देखिए ठीक है, थैंक यू, आपके ऑनेस्टी के लिए ताली बजाओ, थैंक यू। देखिए हमारे जीवन में कई प्रकार की कलाएं हो सकती है, हम कितने धन धान्य संपन्न हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कितनी भी डिग्रियां हो सकती है, लेकिन ये बीमारियों के चपेट से कोई मुक्त नहीं। अभी ऐसा तेज गति से बढ़ती जा रही है, आई कैन विजुअलाइज, अगर 40 साल में 40% बढ़ सकता है, 30% बढ़ सकता है, आने वाले और 10-20 साल में क्या होगा आप सोच लीजिएगा। ऐसा एक व्यक्ति नहीं रह जाएगा जिसको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक नहीं होगा। हमें अभी कुछ करने की आवश्यकता है। हम सभी को स्वस्थ रहने की कला सीखने के साथ साथ हमारे बच्चों को सिखाने की आवश्यकता है, हमारे परिवार के सदस्यों को ये कला सिखाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं खास आज आपको शेयर कर रहा हूं। सुनिए, ये 5 बीमारियों को ठीक रखने के लिए मैं आपको बहुत सारी बातें नहीं बताऊंगा, सिर्फ 3 बातें शेयर करूंगा। अगर वो 3 बातें भी अगर आप जीवन में अच्छी तरह से अटेंशन देके सुनेंगे, और मैं यही उम्मीद करता हूं, दुनिया में अनेक कॉन्फ्रेंसेस लोग जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, गए, खाए पिए, हंसी मजाक किए, घूमे फिरे, साइट सीइंग किए, चल पड़े ज्यों को त्यों। नहीं, ये एक विशेष स्थान है, एक परिवर्तन भूमि है। यहां आप सभी आए हो, जीवन में कुछ छोड़ना है, कुछ लेके जाना है, कुछ परिवर्तित होके जाना है। यस यस। तो मैं 3 बातें आप सभी को शेयर करूंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर ये 3 बातें भी जीवन में धारण करेंगे तो मेरा पूर्ण विश्वास है यू विल बी स्पिरिचुअली हेल्दी एंड मेंटली, फिजिकली एंड सोशली ऑल्सो हेल्दी। तो 3 बातें कौन सी है? मेडिटेशन फॉर स्ट्रेस फ्री लिविंग। आज दुनिया में सबके जीवन में तनाव तनाव तनाव, टेंशन, बच्चे बूढ़े सभी। तो तनाव मुक्त रहना एक बहुत सुंदर कला है। जो व्यक्ति तनाव मुक्त रहना सीख गया वो जीवन का वास्तव में एक बहुत बड़ी कला सीख गया। तो टेंशन फ्री लाइफ एंड बैलेंस्ड एंड वेजिटेरियन डाइट एंड 3 फिजिकली एक्टिव लाइफ। ये 3 बातों को मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं। सुनिए, सबसे पहले मेडिटेशन फॉर स्ट्रेस फ्री लिविंग। जीवन में किसी को भी तनाव होता है। आजकल प्रतिकूल वातावरण, आप न चाहते हुए भी कोई आपको, गाड़ी आप सही सलामत चला रहे हो, कोई आके आपको डस्ट कर देगा, कांट प्रिवेंट। जब चारों तरफ अनिश्चितता है, कोई नहीं कह सकता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए जीवन में टेंशन तो आता है, बहुतों को टेंशन होता है, परंतु उस टेंशन आया चला गया कोई बात नहीं, लेकिन टेंशन जब बैठ जाता है हमें नुकसान पहुंचाता है। तो जीवन में सदा टेंशन मुक्त रहने के लिए लोग सिगरेट, शराब, इसका आश्रय लेते हैं, परंतु जब तक उसका असर है, वो नशा है, तब तक तो भूल जाते हैं, फिर जैसे नशा उतर जाता है फिर ज्यों को त्यों। कोई डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको ट्रैंक्विलाइजर लिख देंगे, खा लेंगे, थोड़े समय सो जाएंगे, लेकिन जैसे असर गया फिर वही हालत है। तो मेडिटेशन इज द सियोरेस्ट मेडिकेशन फॉर टेंशन। जीवन में तनाव से, स्ट्रेस से मुक्त होना चाहते हो दोस्तों, मैं यही कह सकता हूं कि मेडिटेशन सीखो। और यहां आप सभी को इतने 2-3 दिन में आप सभी को मेडिटेशन सिखाया गया होगा, लेकिन कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जैसे हम साइकिल सीखते हैं, स्विमिंग सीखते हैं, कितने बार गिरते हैं, छिलते हैं, पानी नाक में कान में घुस जाता है, अभ्यास करते करते फिर ऐसा आदत हो जाता है, हम हैंडल छोड़ के भी साइकिलिंग आराम से करते हैं, कहां भी फेंक दो हम डूबेंगे नहीं। तो इसी प्रकार मेडिटेशन ऐसी कला है जो आप एक बार सीख जाएंगे तो निरंतर कर सकेंगे। और भगवान हमें यही चाहते हैं कि हमारा योगी जीवन हो जाए। आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, योगस्थ कुरु कर्माणी, तो कर्म करते समय भी योगयुक्त होके कर। और भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगिर् भवार्जुन, हे अर्जुन तू निरंतर योगी बन जा। तो मेडिटेशन खाली 5-10 मिनट आंख बंद करके बैठ जाने की, उसको मेडिटेशन नहीं कहा जाता है। ऐसी एक सुंदर राजयोग यहां सिखाया जाता है जो कर्म योग है। आप कर्म करते समय, आप अपने कला प्रदर्शन करते समय भी आप मेडिटेशन में रह सकते हो, आप ड्यूटी करते समय भी आप मेडिटेशन में रह सकते हो। तो मेडिटेशन फॉर स्ट्रेस फ्री लाइफ, व्हाट इज दैट? बिकॉज स्ट्रेस इज अ बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ द 21st सेंचुरी। आज दुनिया में सबसे मुख्य प्रॉब्लम वास्तव में टेंशन है। आज हमारा सभी का जीवन हरी वरी करी, ये 3 मुख्य बात है जिस तनाव का कारण। सभी का जीवन उतावलापन, भागम दौड़े। यहां तो फिर भी आप शांति से देख रहे हो सब कुछ, आप सिटी जाओ देखो क्या हालत है। अभी अभी मैं पुणे गया था, बॉम्बे का लाइफ तो बहुत फास्ट है मैं जानता हूं, लेकिन मैं सोच रहा था कि पुणे बहुत अच्छा होगा, लेकिन शाम का समय था, मुझे ट्रेन कैच करना था, 2 हाथ में 2 बैग ऐसा पकड़ा हूं, आप यकीन नहीं करेंगे, रेलवे स्टेशन घुसते ही, वहां जाते ही इतना भीड़ कि लोग धक्का मार के पूरा फ्लाईओवर में लेके आपको कंपार्टमेंट में घुसा देंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, खड़े हो जाओ खाली। तो जहां जाओ हरीड एंड वरीड एंड वी आर ईटिंग करीज, करी मना, करी मना, खूब लाल मिर्ची वाले और मसालेदार पूरा तेल में लतर पतर सब्जी खा के एकदम हा हा लोग करते रहते हैं, फिर कहेंगे मजा आ गया, क्या मजा आया पता नहीं। तो हरी वरी करी, इसके कारण ही आज सभी का जीवन तनावग्रस्त है। वास्तव में वरी डज नॉट टेक अवे टुमारोस ट्रबल। कोई व्यक्ति बहुत चिंताग्रस्त हो जाता है तो कल का जो समस्या है उसका हल नहीं होता है, परंतु आज का ही उसका वो शांति को खो देता है। इसलिए चिंता से कोई वास्तव में आपकी समस्या पूरी नहीं होगी। टू स्टॉप वरिंग प्रैक्टिस मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करेंगे तो चिंता मुक्त रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। तो पॉजिटिव थिंकिंग एंड मेडिटेशन, आपको यहां ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में दो बातें सिखाएंगे। वास्तव में मेडिटेशन इज नथिंग बट पॉजिटिव थिंकिंग। कैसे अच्छा सोचें, क्योंकि मनुष्य जैसा सोचता है ऐसा ही बनता है। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। तो यहां कैसे अच्छा सोचे वो सिखाया जाता है। व्हाट इज पॉजिटिव थिंकिंग, ये क्या देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं, दो बुल, ये दोनों आपस में, दो सांड आपस में लड़ रहे हैं। वास्तव में हम सभी के दिमाग में हमेशा दो सांड लड़ रहे हैं, यहां दिमाग में दो सांड हमेशा लड़ रहे हैं, लेकिन ये सफेद सांड नहीं है, एक काला सांड है, एक सफेद सांड है। वो काला सांड क्या है और सफेद सांड क्या है, क्या है? सफेद सांड है पॉजिटिव थिंकिंग, काला सांड है नेगेटिव थिंकिंग। तो कौन जीतेगा, काला सांड जीतेगा कि सफेद सांड जीतेगा, कौन जीतेगा? सफेद सांड जीतेगा। सोचो सोचो और कुछ बताओ, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा? नहीं, आप जिसको खिलाओगे वो जीतेगा। आप काला सांड को खिलाते जाओ, सफेद को खिलाओ नहीं, देखता हूं कैसे सफेद सांड जीतेगा। और सफेद सांड को खाली खिलाते रहो, काला सांड को खिलाओ नहीं, देखता हूं कौन जीतेगा। तो जिसको खिलाओगे वो जीतेगा। आप किसको खिलाना चाहते हो, सफेद को? यस। तो जीवन में सदा पॉजिटिव सोचना है। क्यों, मैं आपको एक सिंपल स्टोरी सुनाता हूं, आपको सहज होगा। एक कोई गांव था, वहां कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहां तीन मजदूर काम कर रहे थे। एक बहुत बड़ा व्यक्ति रास्ते में गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि तीन मजदूर पत्थर तो तोड़ रहे हैं, लेकिन तीनों का हाव भाव कुछ अलग अलग नजर आ रहा है। एक व्यक्ति था एकदम छलांग लगा लगा के खुशी से एकदम हथौड़ा मार रहा है, तोड़ रहा है, वाह वाह कर रहा है, नाच रहा है, डांस कर रहा है और तोड़ रहा है। दूसरा ऐसे बैठ के तोड़ रहा है, तोड़ रहा है आराम से। तीसरा एक हथौड़ा, फिर जाके वहां बैठता है, ऐसा करता है, वहां जाके करता है, वहां जाके फिर पानी पीता है, एक हथौड़ा लगा। तीनों का एक्टिविटी अलग लगा। वो नजदीक गए, देखे थोड़ा सा, तो जो सबसे एकदम थका हुआ नजर आता था, एक हथौड़ा मारता था फिर जाके वहां बैठता था, उसको जाके पूछते हैं, भाई तू क्या कर रहा है? तो उन्होंने कहा, दिखाई नहीं दे रहा है, मैं मेरा कर्म कुट रहा हूं, यही भगवान ने मुझे ड्यूटी दिया है, रोज पत्थर तोड़ना पड़ता है, क्या मेरा भाग्य है, नहीं देख रहे हो? फिर वो दूसरे मजदूर के पास जाते हैं, पूछते हैं, तू क्या कर रहा है भाई? तो कहते, देखो भाई, ये संसार तो एक कर्म क्षेत्र है, यहां हर एक को काम तो करना ही पड़ता है, बिना काम तो आप रह नहीं सकते हो, और मैं बाल बच्चे वाला हूं, मैं कुछ मजदूरी करता हूं, कमा के लेता हूं, मेरे बच्चे खाते हैं, काम नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा। तीसरा व्यक्ति जो एकदम खुशी खुशी से छलांग लगा रहा है, एकदम तोड़ रहा है, मुस्कुरा रहा है, खूब हथौड़ा मार रहा है, उसके पास जाके देखते हैं, बड़ा खुशी खुशी से तोड़ रहा है, तो कि अरे भाई तू क्या कर रहा है? तो क्या कहूं जनाब, अरे मेरा तो और सौभाग्य है, पता है आपको, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, बहुत बड़ा, यहां तो करोड़ों रुपए का एक मूर्ति स्थापना होगी, लोग लाखों लोग इधर आएंगे, इतना भीड़ मचेगा, वाह मेरा भाग्य, मेरा कितना पुण्य जमा हो रहा है। और हां, हमारे जो गांव का ट्रस्टी है ना, बहुत बहुत दयालु है, और मैं जो मजदूरी कर रहा हूं ना, वो लोग मुझे खूब पैसा देते हैं, मेरे बच्चों को भी खिलाता हूं, वाह जना वाह, एक हथौड़ा धड़ाम। ये तीनों में से काम तो वही कर रहे हैं, कौन व्यक्ति अच्छा कहेंगे? पक्का? तो उसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। तो जीवन में जो सदा पॉजिटिव सोचता है सदा खुश रहता है, सदा अच्छा रहता है। तो जीवन में हर एक के दिमाग में ये दो सांड लड़ रहे हैं, लेकिन आप किसको जिताना चाहते हो? आप जिसको जिताना चाहोगे वही जीतेगा, है ना? नहीं तो जीवन में पॉजिटिव कैसे सोचे हमारी बहनें आपको सिखाते हैं, ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आप सीखेंगे। परंतु व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन इज नथिंग बट द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आप सभी कौन हो उसको रियलाइज करने का, द रियलाइजेशन ऑफ द रियल आई, मैं रियली कौन हूं उसको रियलाइज करने का विज्ञान का नाम मेडिटेशन है। एंड वास्तव में आप सभी कभी सोचे हो कि हम कौन है? सोचा है कोई यहां आने से पहले? यहां तो अभी सोचे होंगे आप, क्योंकि आप कॉन्फ्रेंस पूरा होने को जा रहा है, आप सभी को बताया गया होगा। लेकिन यहां आने से पहले आपने कभी सोचा है जिंदगी में? सोचा था कि मैं कौन हूं? मेरे ख्याल से कोई नहीं सोचता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं ना कि हम कौन है। लेकिन क्या ये शरीर हम है? नहीं नहीं, ये जो शरीर आप देख रहे हो इसकी रियलिटी क्या है आप देख लीजिएगा। इसकी रियलिटी यही है। आप कभी हॉस्पिटल में आइए, मैं ऑपरेशन थिएटर में दिखाऊंगा कि इस शरीर के अंदर क्या है, कितने मल मूत्र कफ पित्त रक्त क्या क्या गंदगी भरा पड़ा है। बाहर से एक सुंदर चमड़ी ढकी हुई है, बस पॉलिथिन कवर जैसा। लेकिन हम सभी हड्डी मांस का एक एक पुतला है, और इट इज नथिंग बट मेड अप ऑफ फ्लेश एंड बोन्स। साइंस का कहना है कि हम सभी एक एक भौतिक बींग है, एक फिजिकल बींग है। परंतु नहीं दोस्तों, हम सभी एक एक वास्तव में स्पिरिचुअल बींग है, एक चेतना शक्ति है, ये आध्यात्मिक सत्ता है, एक पॉइंट ऑफ लाइट है, एक डिवाइन पॉइंट ऑफ लाइट है। और हम भ्रुकुटि के बीच में यहां हम हमारे मध्यम मस्तिष्क में रह के इस शरीर को चलाते हैं। ये शरीर एक गाड़ी है, आत्मा इसमें एक ड्राइवर के समान है। इसलिए सिख धर्म में कहते हैं भ्रुकुटि के बीच चमकता है एक अजब सितारा, गरीबानु साहिबा लंगदा प्यारा। तो ये शरीर मैं बता रहा था कि जितना आत्मा जितना सुंदर सतो प्रधान, ये शरीर भी उतना अच्छा है। तो मेडिटेशन कुछ नहीं है, अपने आप को आत्मा समझकर पिता परमात्मा को याद करना। और पिता परमात्मा कौन है आप सभी को परिचय मिला होगा? कौन है? कौन है? नहीं बोल रहे, जोर से बोलना चाहिए ना, शिव बाबा। यस, सभी कहो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, वाह बाबा वाह। तो परमात्मा वास्तव में हम सभी के बाबा हैं, पिता हैं, और वो शिव है। इसलिए कहते हैं शिव परमात्मा नमः। वो भी एक ज्योति है, इसलिए उनको ज्योतिर्लिंगम के रूप में भारतवर्ष में हम स्मरण करते हैं। भारत में सबसे प्राचीन मंदिर सोमनाथ मंदिर, जहां ज्योतिर्लिंगम की स्थापना की गई थी। तो देखिए, मेडिटेशन अर्थात स्वयं को आत्मा समझकर पिता परमात्मा को याद करना, बड़े प्यार से याद करना, जैसे एक छोटा बच्चा अपने मां बाप को याद करता है। और मेडिटेशन इज कॉन्शियस कॉन्शियसनेस ऑफ द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, अर्थात जागृत अवस्था में रहकर पिता परमात्मा को याद करना। आंखें बंद करके सो जाना उसको मेडिटेशन नहीं कहा जाता है। तो जागृत अवस्था में रहकर, और जो मेडिटेशन करता है उसको वास्तव में सर्व प्राप्ति की चाबी मिल जाती है। दिस इज द गोल्डन की फॉर ऑल अटेनमेंट्स। भगवान को मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, बिन मांगे मोती मिले, मांगत न मिले भी। भगवान को मांगने से मिलता तो आज भारत सारी दुनिया में सबसे एकदम धनी हो जाता। नहीं नहीं, भगवान कहते हैं मेरा योग्य बच्चा बनो, मेरा योग्य संतान बनो, तो मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा। मेरे साथ तार लगाओ, कनेक्शन जोड़ो, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, जिसके द्वारा तुमको सर्व प्राप्ति होगी। और मेडिटेशन इज एक्सपीरियंसिंग द एंजेलिक स्टेज। आप ऐसा अनुभव करेंगे जैसे मैं एक फरिश्ता बनकर एकदम उड़ रहा हूं। कोई व्यक्ति के पंख होते नहीं है वास्तव में, लेकिन कोई व्यक्ति अगर बहुत खुश रहता है तो आप क्या कहते हो, क्या भाई इसका पांव तो जमीन में नहीं है। तो इसी प्रकार जब जो कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है उसको इतना आनंद आता है, इतना मजा आता है कि वो इतना खुशी खुशी से दौड़ता रहता है, भागता रहता है, नाचता रहता है। देखने वाले लोग कहते हैं ये तो एक एंजल है। और मेडिटेशन द्वारा परमात्मा से इतनी शक्ति की प्राप्ति होती है कि अपनी बुराई तो क्या, दूसरों की भी बुराइयों को हम नष्ट कर सकते हैं। इसलिए शिव शक्ति के रूप में दुर्गा को दिखाते हैं, दुर्गुण को नाश करने वाली। और इनके 10 भुजाएं दिखाते हैं। कोई व्यक्ति का 10 हाथ कभी हो सकता है? हो सकता है। परंतु कोई व्यक्ति अगर 5 आदमी का काम कर देता है तो आप क्या कहते हो, इसके तो भाई 10 हाथ है। तो परमात्मा हमें इतनी असीम शक्ति दे देते हैं जो चाहो सो कर सकते हो। इसलिए आज तक हम भगवान को प्रार्थना करते आए, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना। क्या शक्ति कोई चीज है क्या? ले भाई आधा किलो, ले भाई एक किलो। परमात्मा से जो तार जोड़ता है, जैसे आपके मोबाइल डिस्चार्ज हो जाती तो क्या करते हो आप? कनेक्शन करते हो। इसी प्रकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने का नाम मेडिटेशन है, जिससे आप चार्ज हो जाएंगे। सो मेडिटेशन इज एक्सपीरियंसिंग बॉडीलेस एंड डबल लाइट। जो मेडिटेशन करता है ऐसा अनुभव होगा जैसा शरीर है नहीं, बिल्कुल हल्कापन, एकदम लाइट, एकदम लाइट। आपके टांग दर्द, कमर दर्द, घुटना दर्द गायब, ऐसा लगेगा एकदम हल्का, एकदम डबल लाइट फ्रेश। और मेडिटेशन इज स्प्रेडिंग द वाइब्रेशन ऑफ गुड विशेस टू द एंटायर ग्लोब। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये खाली हम तोता जैसा रटते थे, लेकिन प्रैक्टिकल आचरण में, प्रैक्टिकल जीवन में हो, हर एक के साथ, सबके प्रति सुभावना, शुभकामना, उसको कहते हैं मेडिटेशन। और मेडिटेशन करने से ऐसा अनुभव होगा जैसे एक छोटा बच्चा अपना मां बाप का हाथ पकड़ता है तो उसको कोई डर भय नहीं रहता है, कोई डर भय नहीं रहता है। इसी प्रकार ये संसार एक भाव सागर है दोस्तों। जैसे सागर में नमकीन पानी भी है, बड़े बड़े तरंग भी है, आपके नाक में कान में घुस जाएंगे, जहरीले सांप भी है, मगरमच्छ भी है, बड़े बड़े व्हेल्स भी है, लेकिन इस भव सागर में जो परमात्मा का हाथ और साथ पकड़ता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। और मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन इज एक्सपीरियंसिंग एज इफ गॉड इज वॉचिंग मी। अगर कोई व्यक्ति का कोई बड़ा बस हो या प्रोफेसर हो उसके सामने हमेशा है, वो जीवन में अलबेला हो सकता है, इनडिसिप्लिन हो सकता है, हर काम एक्यूरेट करेगा। इसी प्रकार मेडिटेशन कुछ नहीं है, हमेशा सोचना कि भगवान मुझे देख रहे हैं, भगवान की दृष्टि मेरे ऊपर है, भगवान की नजर मेरे ऊपर है, तो जीवन में कभी भी पाप कर्म कर सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं, ये जीवन बिल्कुल सुधर जाएगा, तो उसको ही मेडिटेशन कहते हैं। और मेडिटेशन इज नथिंग बट जैसे छोटे बच्चे अपने मां की गोदी में होते हैं, तो दुनिया में कुछ भी होता है तो उनको कोई प्रकार का टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी होता रहे। इसी प्रकार हम भगवान को कहते थे खाली, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधुश्च सखा, तुम्हें वो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घने। ये तो तोता जैसा खाली रटते थे, लेकिन प्रैक्टिकली भगवान को अपने मां समझकर अपने जीवन को सौंप देना, देखो जीवन में क्या आनंद है, क्या मजा है, तो ही आप अनुभव करेंगे। तो परमात्मा अभी आए हैं और हमको मात पिता समान पालना दे रहे हैं, शिक्षक बनकर पढ़ा रहे हैं, हम सभी को सद्गुरु बनकर ये भवसागर से पार कर रहे हैं। तो परमात्मा से सर्व संबंधों की अनुभूति का रस अनुभव करना, उसको ही मेडिटेशन कहा जाता है। सो प्रैक्टिस राजयोग का मेडिटेशन। करेंगे आप सभी? नियमित करेंगे? धीरे धीरे बोल रहे हैं, यस यस, थैंक यू। सो टेंशन फ्री रहने के लिए एक ही मात्र विधि है मेडिटेशन। दूसरा है हेल्दी रहने के लिए, और दूसरी विधि है हेल्दी डाइट। क्योंकि जैसा अन्न ऐसा मन ऐसा तन, आप जैसा भोजन खाएंगे उसी अनुसार आपका शरीर ऐसा ही होगा। क्योंकि ये शरीर एक गाड़ी है दोस्तों, मैं आपको बताया, जैसे गाड़ी में आप क्या डालते हो? फ्यूल डालते हो। पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल डालते हो, डीजल गाड़ी में डीजल डालते हो, कि पेट्रोल में भी डीजल, डीजल में पेट्रोल, नहीं ना? तो इसी प्रकार हम ये गाड़ी, शरीर जो शरीर रूपी गाड़ी है, इसमें भी हमें डेली डालना पड़ता है। जो भोजन खाते हैं ये हमारा फ्यूल है, इससे हमें शक्ति मिलती है, हम चलते हैं। तो जैसे गाड़ी में एकदम फ्यूल कम हो जाएगा तो क्या होगा? गाड़ी बंद। ओवरफ्लो कर दो तो भी गड़बड़। इसी प्रकार जीवन में अगर सदा स्वस्थ रहना चाहते हो तो फिस्टिंग एंड फास्टिंग ये दोनों नुकसानकारक है। अभी मिला फिस्टिंग माना ज्यादा फिस्ट, बहुत आकंठ भोजन कर लेना, आ करने से दिखेगा इतना लोग खा देते हैं। आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक पंडित जी थे, भाषण करते थे जगह जगह। एक दिन रात बीमार हो गए, बहुत पेट में दर्द हुआ, मेरे जैसा एक डॉक्टर को बुलाए, तो जाके हम देखे जाके पता चला कि पंडित जी कहीं भाषण करने गए थे, थोड़ा ओवर ईटिंग कर लिए हैं, इसलिए पेट में बदहजमी होकर दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा, पंडित जी ठीक हो जाओगे, कोई चिंता करने की बात ही नहीं है, मैं आपको दो ही कैप्सूल सिर्फ देता हूं, ये दो कैप्सूल खा जाओ, सो जाओ, सबरे ठीक हो जाएगा। तो पंडित जी बड़ा एकदम बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लेके डॉक्टर को देख के कहते हैं, डॉक्टर साहब ये दो कैप्सूल खाने के लिए जगह होता तो और दो गुलाब जामुन एक्स्ट्रा खा के नहीं आ जाता? तो कहने का मतलब लोग कभी कभी इतना खा जाते हैं कि आ करने से दिखेगा, वो गलत है। खाएंगे और ही करेंगे पूरा हवा निकलने तक, वो बिल्कुल गलत। हमेशा वन थर्ड खाली रहना चाहिए पेट, वन थर्ड खाली। कम कम तीन चार बार खाएंगे सदा स्वस्थ रहेंगे। जो व्यक्ति दो बार खाता है नेचुरली 12 घंटे के बाद खाएगा तो इतना खाएगा, भूख लगा फटाफट खाएगा इतना खा जाएगा, तो फिर शुगर भी बढ़ेगा, मोटापा भी बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। कम कम तीन चार बार खाना चाहिए। और फास्टिंग करना भी मना है। लंबे समय तक फास्टिंग करेंगे आपको यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, गाउट प्रेसिपिटेट हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, पेट में घाव हो जाएगा। और किसी को डायबिटीज अगर है, अगर वो फास्टिंग करता है तो शुगर एकदम डाउन हो जाएगा, बेहोश होके परम शांति। तो इसलिए ये दोनों मना है हेल्दी रहने के लिए। देखिए, जैसे हम डीजल कार में डीजल डालते हैं, पेट्रोल कार में पेट्रोल डालते हैं, इसी प्रकार ये शरीर रूपी गाड़ी में क्या हम सही फ्यूल डालते हैं? हैं? देखिए मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, क्या मनुष्य एक मांसाशी प्राणी है? मनुष्य मांसाशी प्राणी नहीं है, क्योंकि हमारे देखिए इतने बड़े बड़े दांत नहीं है फिर भी हम ये सब खा रहे हैं गंदी चीजें, हमारे इतने बड़े बड़े नाखून नहीं है फिर भी हम क्या क्या खा रहे हैं, तो क्या होगा? आप सोचिए, आप एक पेट्रोल गाड़ी में डेली डेली आप किरोसिन पानी डीजल क्या क्या डालते रहो, क्या होगा? तो मनुष्य वास्तव में शाकाहारी प्राणी है, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आप देखिए शाकाहारी प्राणियों की तरह है, और फिर भी हम पशु पंछी जानवरों को मार के खा रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं, ओ मैन वेयर इज योर ह्यूमैनिटी? आज हम सभी मानव है, क्या हमारे अंदर मानवीयता है? हम एक पशु पंछी जानवर को हमारे घर में रखते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, उसको रेस्ट सेट देते हैं, सर्दी गर्मी से बचाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, बीमार हो जाता है तो वेटरनरी सर्जन से जाके दवाई कराते हैं, और एक दिन उसका गर्दन मोड़ के काट के खा जाते हैं, यही मानवीयता है? सोचो तो सही, हमारे बच्चों को अगर कोई अपने घर में रखता है, खिलाता पिलाता, स्कूल में भेजता, ट्यूशन कराता, सब कुछ करता, और एक दिन गर्दन मोड़ के खा जाता, कैसा लगेगा हमको? यही मानवीयता है, इसलिए हम श्रेष्ठ प्राणी है। तो दूसरे पशु पंछी जानवरों को मार के खाना ये तो गलत है, जिसके कारण आज बीमार हो रहे हैं। तो इसलिए आज दुनिया में जो कैंसर फैल रहा है, पांच मुख्य चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं जो खा के लोग कैंसर हो रहा है। व्हाट इज दिस? क्या है इसको? यस, ठीक ही बोला, इसको कहते हैं हॉट डॉग। इसमें जो नाइट्रेट्स है, कई प्रकार की इसमें चीजें हैं जो कैंसर पैदा करने वाले हैं, इस प्रकार ये सब खा रहे हैं हम। आज बड़े बड़े शहरों में जाओ, लोग यही खाते रहते हैं, सब मैकडोनाल्ड सब का, बड़े बड़े सब मल्टीनेशनल कंपनी सब हमारे देश में, हम सभी को गिनी पिग समझते हैं, ये सब डंप करके बेच रहे हैं, ये खा के हम बीमार हो जाएं, फिर हमारे देश में खूब मेडिसिन फैक्ट्री खोल रहे हैं ताकि मेडिसिन भी सेल हो। हम सभी कितने बुद्धिमान हैं, ये सब खा के बीमार होके उनकी दवाई भी खरीद रहे हैं। तो ये क्या है? द ग्रेट बर्गर किंग। ये भी खा के, एक बर्गर खाओगे आपको 10 घंटा दौड़ने से हजम होगा, 10 घंटा मैं बोल रहा हूं। लोग यही खाते रहते हैं आजकल के बच्चे। इस प्रकार डोनट, ये भी देखिए इसमें भी ऐसी चीजें हैं जो कि कैंसर पैदा करता है। ये सब क्या है? द फ्रेंच फ्राइज, इसको हम कहते हैं कैंसर फ्राइज, कैंसर पैदा करता है ये सब। और ये सब क्या है? चिप्स, कुकीज, क्रैकर्स, ये सब आप आजकल मैं कहीं भी जाता हूं ट्रेन में देखता हूं सब पुड़िया फाड़ फाड़ के लोग खा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। मैं अभी एक ट्रेन में आ रहा था रात को, एक इतना छोटू सा बच्चा, 2 साल का बच्चा, चिप्स खा खा के सो गया। सवेरे एक तो उठा बहुत लेट 8 बजे के बाद, और हमारे भारतीय कल्चर क्या है, उठने के बाद हम क्या करते हैं? मां बाप को पहले नमन करते हैं, मां बाप से ब्लेसिंग्स लेते हैं, जीते रहो बच्चे। परंतु वो बच्चा उठते ही क्या कहते हैं जानते हो? मम्मी चिप्स, मम्मी चिप्स। वो रात को स्वप्न में भी खाता होगा शायद। और बच्चों को देखो, आजकल के बच्चों जितना हाइट उतनी विड्थ, गोल मोटोल पूरा फुटबॉल की तरह, खेलकूद नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे हालत देख नहीं सकते हो, सब बीमारियां। मां बाप स्वस्थ है, बच्चों को 20 साल भी नहीं हुआ है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सब बीमारियां हैं। तो ये सब बहुत नुकसानकारक है। टाइम अभाव है, नहीं तो मैं दिखाता इसमें क्या है। इसमें ट्रांस फैट है जो हार्ट अटैक कराता है। जो कढ़ाई में तलते हैं उसको बार 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 उबालते हैं, तलते हैं, वो सारा ट्रांस फैट हो जाता है। और एक चिप में थप थप 20-30 बूंद तेल गिरता है, मैं दिखा सकता हूं। हम कहते हैं हम कुछ नहीं खाते हैं, एक चिप में अगर 20-30 बूंद तेल गिरता है तो हम जब चिप खाते हैं कितना खाते हैं, 1-2 खाते होंगे, कितना खाते हैं, पूरा पैकेट को पैकेट। और जहां देखो लोग तो पानी नहीं पीते आजकल, सब थम्स अप सब आजकल आता है, सब खा के पूरा शरीर को बर्बाद करके रखे। तो इसलिए आज डॉक्टर कहते हैं संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे, क्योंकि इसमें जो लेसिथिन है, कोलेस्ट्रॉल है, यही हार्ट अटैक कराता है, ये सारी बीमारियों का जड़ है। मैं बचपन से कभी भी नॉनवेज टच नहीं किया जी, नहीं, जो हमारे लिए नुकसानकारक है क्यों खाएं, ये सब चीजें क्यों खाएं। मैं कहता हूं हम एक शाकाहारी प्राणी है, ये सब चीजें क्यों टच करें। मैं बचपन से ये सब कभी टच नहीं किया, मेरा क्या नुकसान हो गया। आज दुनिया में जितने भी महापुरुष होके गए हैं, नेम एनीबॉडी, आई विल टेल ऑल ऑफ देम, दे वर वेजिटेरियन, शाकाहारी। तो डॉक्टर को नॉलेज नहीं है, मैं कहता हूं डॉक्टर्स डिफर, बहुत डॉक्टर्स हैं मुझे जो कहते हैं, मेरे पास लेके आए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उनको सारे इंफॉर्मेशन नहीं होता है। आज दुनिया में इतने कंट्रोवर्सीज है, कोई व्यक्ति मूंझ जाता है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन एक समय था जो कहते थे एनिमल प्रोटीन इज द बेस्ट बायोलॉजिकल प्रोटीन, परंतु वो स्टेटमेंट आज चेंज हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूं। जो ज्यादा नॉनवेज खाता है उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस से लेके, उनको कैंसर से लेके सारी बीमारियां हो रही है। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण बता देता हूं, आप रोज 5 दिन तक खाली नॉनवेज खाइए, खाली नॉनवेज, नो सब्जी, नो साग सब्जी, नो वेजिटेबल, आप देख लीजिए एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। लेकिन डेली इतने इतने वेजिटेबल खाइए, आप देखना कुछ नहीं होगा। आपका सिस्टम ही, हमारे सिस्टम ही शाकाहारी प्राणी का, आप उसमें गलत चीजें डालेंगे तो क्या होगा, तुरंत रिजल्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन अल्टीमेटली एक दिन डिफंक्ट हो ही जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए कहते हैं दाल इज पुअर मैन्स मीट, दाल अगर हम रोज खाते हैं हमारे जो प्रोटीन की आवश्यकता है सब मिल जाता है, कोई जरूरत ही नहीं है। मैं कभी बचपन से बताया मैं नॉनवेज टच नहीं किया, क्या मेरा हाइट में कम हो गया, मेरी बुद्धि में कम हो गया, क्या हो गया। आज दुनिया में आप देखो हमारे जो पूर्वज, हमारे लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता आदि, जिनको हम पूजा करते हैं, नमन करते हैं, उनके मूर्ति रख के मंदिरों में कभी नॉनवेज हम देते हैं, प्याज लहसुन तक नहीं जाता है। आप देखिए, आप नॉर्थ में जाइए वैष्णो देवी की तरफ, उधर होटलों में भी अगर आप प्याज मांगेंगे ना, आपको देखेंगे कहां से एक असुर आ गया। हमारा कल्चर ही नहीं था, विदेशी लोग आके हमारे देश में, ड्यूनो हमारे देश में 200 साल पहले कोई चाय नहीं पीता था, चाय क्या है पता ही नहीं था किसी को। विदेशी लोग चाय का पौधा लेके आए, हमारे देश में उगाए और सबसे पहले फ्री चाय पिलाए सबको, ब्रुकबंड, लिप्टन, आप सभी नाम सुने होंगे, फ्री पिलाए। और जब लोग मुफ्त मिलता है तो लोग तो पॉइजन भी पी जाएंगे, जब एडिक्ट हो गए फिर बेचना शुरू कर दिए। और आज भी बेस्ट क्वालिटी चाय विदेश जाता है, अच्छी तरह से रैपिंग होके, वही 10 गुना रेट में हम खरीदते हैं। तो हमारे देश में ये सब कल्चर था ही नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति बहुत बहुत श्रेष्ठ संस्कृति, लेकिन हम समय अनुसार सब कुछ बदल गए, हमारे खान पान बिल्कुल कलुषित हो गया, जो नहीं खाना चाहिए खा रहे हैं, जिसके कारण बीमार हैं। सो दीज आर ऑल अनहेल्दी डाइट्स, ये सब चीजें खा के हम आज बीमार हैं। और ये सब अनहेल्दी ड्रिंक्स है, आज देखो गर्मी के मौसम में लोग क्या क्या पी रहे हैं, तो ये सब पीते ही शुगर एकदम ठुस हो जाता है। और ये सब चीजें मैं कहूंगा इसमें 50 पैसा का भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, नो विटामिन, नो न्यूट्रिशन, एब्सोल्युटली। और इसमें लेटरिन को साफ करने का जो केमिकल्स है इसमें सब है, मैं आपको मेरे पास बहुत सारी वीडियो क्लिप से दिखा सकता हूं। ये मल्टीनेशनल कंपनीज आपको हरी लूट लूट रहे, मैं बता रहा हूं इसमें कुछ भी नहीं है। मेरे पास एक लेडी आई थी 120 किलो की, उसको डायबिटीज, हाइपोटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म, घुटने में सब ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्या क्या बीमारी नहीं, सब बीमारियों की खान। मैं बोला बहन जी थोड़ा ध्यान तो रखो, हाँ सभी खाते हैं, सब पीते हैं, तो क्योंकि सब हो गया है। पहले जमाने में हमारे घर में कोई आता था तो उसको दूध पिलाते थे, छाछ पिलाते थे, लस्सी पिलाते थे, कुछ नहीं तो नींबू पानी पिलाते थे। आजकल कोई आएगा तो थम्स अप, यही हमारा कल्चर हो गया है। तो मैं बता रहा था एक 120 किलो की एक लेडी आई थी, मैं बोला कि बहन जी ध्यान तो रखो, कहती डॉक्टर साहब मैं कुछ नहीं खाती हूं। मैं बोला अच्छा सवेरे क्या खाती हो, बोलती है कि मैं सवेरे नहीं खाती हूं कुछ भी। मैं सोचा चाय फाय पी के जाती होगी, वर्किंग लेडी होगी। बोला अच्छा सच बताओ आप लंच में क्या खाती हो, कहते हैं लंच भी नहीं करती हूं। मैं सोचा टोस्ट मंगाती होगी शायद, वर्किंग लेडी आजकल तो वर्किंग लंच टोस्ट ले लेते हैं, सैंडविच ले लेते हैं। मैं बोला अच्छा कोई बात नहीं सच बताओ डिनर क्या करते हो, क्योंकि लोग डिनर सवेरे कुछ नहीं करेंगे, रात को एकदम आके जाएंगे कोई होटल में खूब पूरा इतना खाते हैं। तो मैं बोला कि अच्छा डिनर क्या करते हो सच बताओ, तो मैं डिनर भी नहीं करती हूं। मैं तो सिर पे हाथ दे दिया, बोले करती क्या हो? कहती मैं 20 बोतल कोका कोला पी जाती हूं सारे दिन में, और 120 किलो। इसमें खाली एम्प्टी कैलोरीज है जो मोटापा बढ़ाता है, आप गुब्बारा जैसा फूल जाएंगे, लेकिन इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं, कोई विटामिन नहीं, कोई मिनरल्स नहीं, कुछ भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूं ये सब अनहेल्दी चीजें हैं जो खा के आज हम अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं, खास करके बच्चे। तो इसलिए ये सब लेना जरूरी नहीं है। मैं अभी थोड़े दिन पहले ट्रेन में जा रहा था, रात को 11 बज गया था, एक 2 साल का बच्चा इतना हंगामा, वो कंपार्टमेंट में कोई सो नहीं पा रहे थे हम। मैं उसकी माताजी को जाके बोला ये बच्चा को सुलाओ तो सही, थोड़ा कितना हंगामा कर रहा है। तो कहती है उसकी माताजी, कहती कि जब तक इसको कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाएंगे सोएगा नहीं। यू बिलीव मी, 11:30 बजे एक स्टेशन आया, उसके पिताजी जाके कोल्ड ड्रिंक लाया, जब पिया बच्चू सोया। हम ऐसे कल्चर हम अपने बच्चों को भी सिखा के आदती बना दिए हैं, क्या हाल होगा। तो ये सब चीजें जो अगर मोटा होना नहीं चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, पूड़ी पेड़ा पकोड़ा पिज्जा पकवान पराठा 6 पीस, मैं कहता हूं ये रेस्ट्रिक्ट करो। कभी कभी वन सीन है वाइल थोड़ा खाली अलग बात है, लोग रोज रोज आए दिन ये सब खाते रहते हैं, जिसके कारण मोटे होते जा रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं। एंड ये मैकडोनाल्ड प्रोडक्ट बता रहा था कि देखा गया इसमें ट्रांसफैट बहुत ज्यादा है। एक पुड़िया अगर फ्रेंच फ्राइज खाते हो एक पैकेट, आपको 3 घंटा दौड़ना पड़ेगा उसको हजम करने के लिए, बिकॉज इट कंटेन 600 कैलोरीज। और ये ट्रांसफैट होता है जो हार्ट अटैक कराता है। देखा गया 2% ट्रांसफैट भी अगर हमारे डाइट में कम हो गया, 53% हार्ट अटैक कम हो जाता है। दीज आर साइंटिफिक एविडेंसेस। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों क्या करना है, हेल्दी डाइट फॉर हेल्दी बॉडी। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो फिजिकली और मेंटली, हेल्दी डाइट लो, एज द फूड सो द माइंड। मन से तन से स्वस्थ रहना जानना चाहते हो सो चेंज योर डाइट एंड चेंज योर लाइफस्टाइल। और ये सब अनहेल्दी डाइट जो है इसको नहीं लेना है। जितने साग सब्जी वेजिटेबल फ्रूट्स ये सब लीजिएगा तो जीवन में हेल्दी रहेंगे, ठीक है। थर्ड एस्पेक्ट इज एक्सरसाइज। फिश, देयर इज नो नीड टू टिक फिश। आप उसमें जो चीजें हैं, आप डू नो उसमें कहते हैं सबसे ज्यादा ओमेगा फैटी एसिड है जो हार्ट अटैक से बचाएगा। यू डोंट नो, आपको फेनुग्रिक जो सीड्स है, मेथी है, व्हीट है, उसमें उससे 3 गुना 7 गुना ज्यादा उसमें ओमेगा फैटी एसिड है। तो आप शाकाहारी बनिए, आपको सारा सब कुछ मिलेगा। देर इज नो नीड टू टेक फिश, आई टेल यू। मैं आपको एक ऑनेस्टली एक बात सुनाता हूं, आपको कैसा लगे नहीं बता सकता हूं। हमारी संस्कृति क्या है, मेरे ग्रैंडफादर, मैं बता रहा हूं, हम लोग घर में 6 बजे के बाद कोई सो ही नहीं सकता है, इतना बड़ा डंडा लेके उठा के पीटी तक सोया है अभी तक, उठ। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार कोई अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी। भाई मेरे ग्रैंडफादर कभी कभी मुझे तालाब में नहाने के लिए लेके जाते थे, नदी में नहाने के लिए लेके जाते थे, और वहां जाके थूक कर देते थे, तो एक मछली आके टोक कर खा जाता था, तो मुझे दिखाया गया देख 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 मछली क्या खा रहा है, छी छी इसको फिर लोग खाते हैं। बचपन से ही ऐसा साइकोलॉजी बना दिए, खाने का संभव देखने के लिए भी इच्छा नहीं होती। तो ये सब जरूरी नहीं है किसी को। देखो एक मछली को जब मारा जाता है, बेचारा कितना तड़पता है, कैसे तड़पता है, सोचो तो सही। जब कोई व्यक्ति को, कोई जानवर को मारा जाता है, वो अपने को बचाने के लिए सारे टॉक्सिन, सारे जहर निकालता है अपने शरीर से, और वो सारा जहर जब सारा उसके ब्लड सर्कुलेशन में सब पूरा बॉडी में फैलता है, जब हम उसको खाते हैं, वो टॉक्सिन कहां जाएगा, हमारे शरीर में आएगा ना, नहीं नुकसान करेगा ना, नहीं। तो ये सब आउट ऑफ परवर्सन टॉन्ग टेस्ट वी आर ईटिंग ऑल दिस थिंग, आउट ऑफ इग्नोरेंस मैं कहूंगा, हमें पता नहीं। लेकिन आज हमें भगवान क्या कह रहे हैं कि देखो तुम सभी देवी देवताएं थे, तुम जागो हो देव पुजारी, अब खुद को देव बनाना है। हमारी भारतीय संस्कृति इतनी प्राचीन, इतनी रिच कल्चर, हम सभी पूज्य थे, महात्मा देवात्मा थे, हम ये सब नहीं खाते थे। हमारे मंदिरों तक आज तक भी जड़ मूर्ति के सामने भी ये सब नहीं दिया जाता है, तो क्या हम प्रैक्टिकली खाते थे? मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हो, दे आर वी आर नॉट किलिंग समबडी। मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हो, एनिमल प्रोडक्ट ले सकते हो, लेकिन किसको मार के खाना ठीक नहीं है। देखिए हाँ, कोलेस्ट्रॉल वाइज देखिए रेस्ट्रिक्टेड लेना चाहिए आपको। जितना भी एक व्यक्ति सारे दिन में, सारे एक महीना में एक एडल्ट व्यक्ति के लिए 500 ml तेल और घी यूज होना चाहिए, एक व्यक्ति के लिए 500 ml। आपको आश्चर्य लगेगा, साइंटिस्ट लोगों ने सभी जानवर पशु पंछी गाय भैंस कुत्ता कबूतर सबको लेके जब खून टेस्ट किए, देखा गया किसी का भी कोलेस्ट्रॉल 50 से ज्यादा नहीं है, नहीं है, नहीं है। सिर्फ एक मनुष्य है जिसका कोलेस्ट्रॉल 300 से ज्यादा है, क्योंकि हम सभी तेल, घी, मक्खन, बटर ये सब खाते हैं। तो हमारा वो भी रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। पहले जमाने में इतने इतने घी पी जाते थे, इतने इतने, मेरे ग्रैंडफादर को मैं देखा हूं कितना कितना खाया जाता, लेकिन कितना मेहनत करता था। लेकिन हम सभी ऐसी कार में घूमेंगे, ऐसी हॉल में बैठे रहेंगे, हमारे कुर्सी में भी पहिया लग गया है, घर घर, और माताओं को तो सबसे बहुत इजी, बटन दबाओ घर पिस गया सब, बटन दबाओ घर कपड़े सब साफ, कोई मेहनत ही नहीं है। तो वो सब खाएंगे तो क्या होगा। तो 1/4 लेना चाहिए। अगर 500 ml आपका महीने में तेल घी यूज होता है तो 1/4 उसका यूज होगा, घी, तेल, घी, मक्खन, बटर जो भी है, उससे ज्यादा नहीं, तो फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अब लास्ट सुनेंगे एक्सरसाइज। क्लियर, मैं जो बता रहा हूं सबको क्लियर है, समझ रहे हैं सभी? तो लास्ट है एक्सरसाइज। फर्स्ट है टेंशन फ्री के लिए मेडिटेशन, और बैलेंस्ड एंड वेजिटेरियन डाइट। एक्चुअली डाइट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आपको पूरा समझने के लिए कम से कम 2 घंटा लगेगा मुझे एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन कम समय में मैं सबको कवर करना पड़ेगा मुझे, इसलिए मैं आपको सार में सुना रहा हूं। देखिए, लॉन्ग बैक बुद्धा टोल्ड, आवर बॉडी इज प्रेसियस, इट इज आवर व्हीकल फॉर अवेकनिंग, ट्रीट इट विथ केयर। लॉन्ग बैक, आज से 2500 साल पहले बुद्ध ने कहा कि शरीर बहुत अमूल्य है, इसको केयर करो। तो गाड़ी, शरीर जैसे एक गाड़ी है, इसमें आत्मा एक ड्राइवर है। आप ड्राइवर कितना भी अच्छा हो, एक्सपर्ट हो, लेकिन आपकी गाड़ी अगर पंक्चर है, ठीक नहीं है, तो क्या कर सकते हो? इसी प्रकार शरीर भी ठीक रखना जरूरी है। जैसे शरीर को आप डेली, जैसे गाड़ी को आप डेली फ्यूल चेक करते हो, फ्यूल डालते हो, इसी प्रकार और क्या करते हो, एक कॉस्टली गाड़ी बहुत करोड़ों रुपया का खरीद के ले आए, लेकिन गैरेज में रखे रहते हो, कभी उसको चलाते नहीं हो, क्या होगा? जैसे राइट फ्यूल डालना जरूरी है, इस प्रकार आपको गाड़ी को चलाने की भी आवश्यकता है। इसी प्रकार वन हैज टू रन द कार रेगुलरली, सिमिलरली सो ऑल्सो द बॉडी कार। तो शरीर को भी चलाने की आवश्यकता है। इसको भी अगर आज साइंटिस्ट कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग इज हाजार्डस, जो लंबे समय तक बैठा रहता है उसको ही सारी बीमारी होती है। तो इसलिए गाड़ी रूपी कार को भी चलाने की आवश्यकता है। और हम जो एक्सरसाइज करते हैं, ये मुख्य रूप में कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। एक होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनेरोबिक, तीसरा होता है योगासन जो आज सिखाते हैं, पोस्चुरल फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, और चौथा होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम, कपाल भाति, भास्त्रिका आदि आदि जो करते हो। तो ये एरोबिक एक्सरसाइज है, जैसे चलना, दौड़ना, साइकिलिंग करना। लेकिन ये हर एक के लिए सब कुछ संभव नहीं है। चलना हर एक के लिए ठीक है, लेकिन कई लोग जो मोटे होते हैं, उनका घुटना घिस जाता है तो वो चल नहीं पाते, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, ऐसे हालत की चल भी नहीं पाते। दौड़ना तो सबके लिए संभव नहीं है, यंग एज में कोई दौड़ सकता है, लेकिन थोड़ा सा 40-50 साल के बाद आपको अभी जोश आया, डॉक्टर ने कहा है दौड़ू, प्रॉब्लम हो जाएगा। साइकिलिंग आप रास्ते में चलाते हो, कोई आगे ठोक देगा, बहुत मुश्किल है वो भी। इसलिए घर में, बेल्कोनी में, छत में आजकल स्पोर्ट्स साइकिल मिलता है, आराम से चलाओ, बहुत अच्छा है। जो मोटे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इट इज नॉन वेट बियरिंग, आपके सारे वेट आपके घुटने पर आ नहीं रहा है, इसलिए बहुत अच्छा है, आपका घुटना कभी भी दुखेगा नहीं, घिसेगा नहीं। तो और वॉकर में चलना भी घर में रख के चल सकते हो, लेकिन ऐसा स्लैंट नहीं करना, प्लेन रखना, अगर ऐसा स्लैंट करके रखोगे तो जाएगा घुटना। और एनेरोबिक एक्सरसाइज हम सभी जानते हैं, ये सब जिम खाना और हेल्थ क्लब में जाके डंबल, बारबेल, पुशअप, सिटअप, ये सब चीजें करते हैं लोग। और योगासन भी आप सभी जानते हो, क्या ऐसे कर सकते हैं आप? हर कोई कर सकता है, कोई बचपन से करता है तो कर सकता है, लेकिन नहीं कर सकते। ये डंबल बारबेल भी हर एक की बस की बात नहीं है। और बाय चांस अगर ऐसा कर भी दिया कभी, क्या हुआ जानते हैं? रामदेव बाबा को देखिए, अगर नशा चढ़ गया, टांग चढ़ा दिए इधर पीछे, उतरेगा नहीं नीचे, होशियार। तो ये सब बचपन से कोई करता है तो बॉडी फ्लेक्सिबल होता है, अलग बात है। तो वास्तव में देयर इज नो शॉर्टकट टू गुड हेल्थ, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। और देयर इज नो मिराकुलस ड्रग दैट मेक यू हेल्दी। कोई मेरे पास बहुत लोग आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब कोई दवाई लिख दो ना, कोई कैप्सूल, थोड़ा पतले हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। ऐसा कोई दवाई भी नहीं है, परंतु एक बात मैं आपको सुनिश्चित कहता हूं कि आप डेली अगर वॉकिंग करेंगे, ब्रिस्क वॉकिंग, थोड़ा फास्ट चलेंगे, नथिंग लाइक दैट, आप बहुत एकदम स्वस्थ रहेंगे जीवन में। ब्रिस्क वॉकिंग जो WHO एनकरेज करता है, फास्ट चलना, धीरे धीरे नहीं। मैं कहीं भी जाता हूं, किसी शहर में देखता हूं, सवेरे सवेरे माताएं चल तो रही है लेकिन वो चल नहीं रहे, वो टहल रहे हैं धीरे धीरे ऐसे ऐसे। वो सारा दिन भी ऐसे ऐसे करते रहो कुछ होने वाला नहीं है, थोड़ा फास्ट चलना है। और चल तो रहते हैं लेकिन आपस में क्या बातें करते हैं, तेरी सास ऐसी है, तेरी बहू ऐसी है, मेंटली कैसे हेल्दी होंगे। इसलिए बहुत एक सुंदर गीत हम बनाए हैं, हमारे विश्वविद्यालय में अवेलेबल है, उसका नाम है रूहानी यात्रा। रूहानी यात्रा आधा घंटा का खास वॉकिंग करने के लिए मैं वो गीत बनाया हूं। बॉम्बे से एक सुंदर गायिका बहुत सुंदर गीत गाई है और उस गीत का धुन ऐसा है आपको बहुत फास्ट चलने की इच्छा होगी। और उसमें सिर्फ भगवान के 300 नाम है। हमारे भारतवर्ष में हम शास्त्रों में पढ़िए कि सवेरे शाम अगर कोई व्यक्ति द्वादश ज्योतिर्लिंगम का नाम स्मरण करता है तो सप्त जन्मम कृतम पापम स्मरणे न विनश्यंती, सात जन्म का किया हुआ पाप भस्म हो जाएगा लिखा है। अगर 300 नाम स्मरण करेंगे तो, अगर 12 नाम स्मरण करने से सात जन्म का पाप भस्म हो गया, 300 नाम स्मरण करेंगे तो सोचिए। कहने का मतलब है कि वो गीत का ट्यूनिंग इतना सुंदर है, सबरे मोबाइल में फिट कर दीजिए, कान में वॉकमैन में सुन के आप अगर चलेंगे फास्ट थोड़ा, देखिए आधा घंटा तक वो गीत है। तो धीरे धीरे रूहानी यात्रा, वो गीत सुनाऊंगा लास्ट में। तो आप इसलिए वॉकिंग इज द परफेक्ट एक्सरसाइज, बहुत सुंदर एक्सरसाइज, आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। एंड जो जब आप वॉकिंग करते हो आपके बॉडी के सारे मसल, सारे बोन, 650 मसल्स एंड 203 बोन्स ऑफ द होल बॉडी इज यूटिलाइज्ड। परंतु फिर भी कुछ कमी रह जाती है। अगर चलने से आप देखिए, साइकिलिंग करेंगे तो पांव का मसल्स ज्यादा यूज होगा, आप स्विमिंग करेंगे तो हाथ का मसल्स ज्यादा यूज होगा, लेकिन चलने से पूरा सारा शरीर का यूज हो रहा है। परंतु फिर भी आपका हाथ कभी उठा नहीं रहे ऊपर, आपका नेक एक्सरसाइज नहीं हो रहा है। इसलिए WHO का कहना है वॉकिंग के साथ साथ थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वार्म अप करना भी जरूरी है। और वॉकिंग इज मैंस बेस्ट मेडिसिन, हिपोक्रेट्स द फादर ऑफ मेडिसिन, आज से हजारों साल पहले उन्होंने कहा कि वॉकिंग इज मैंस बेस्ट मेडिसिन, सबसे बढ़िया दवाई आपके लिए। जो सवेरे सवेरे रोज चलता है मानो उसके लिए सारा दिन के लिए एक वरदान मिल जाता है स्वस्थ जीवन जीने के लिए। और इसलिए नाश्ते से पहले कम से कम 2 माइल तो चलना ही चाहिए सबको। अगर कई लोग कहते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, साधन नहीं है, सुविधा नहीं है, वो है मेरे घुटना ऐसा है, बहुत प्रकार एक्सक्यूज करते हैं, लेकिन इसलिए हाफ एन आवर। अगर किसी के घुटने में दर्द है आप साइकिल चलाओ, बहुत अच्छा। अगर वो भी नहीं कर पाते हो, मैं ग्लोबल हॉस्पिटल में एक हमारे बहुत सुंदर एक्सरसाइज सिखाते हैं, उसका नाम है होलिस्टिक एक्सरसाइज। होलिस्टिक एक्सरसाइज में ना इट एमालगमेट्स एवरीथिंग, इसमें एरोबिक की भी है, एनरोबिक भी है, इसमें एक्यूप्रेशर भी है, सेल्फ बॉडी मसाज भी है, वार्म अप है, स्ट्रेचिंग है, क्लॉपिंग थेरेपी है, म्यूजिक थेरेपी है, सब कुछ इसमें है। आपको कहीं कोई जिम खाना जाने जरूरत नहीं, किधर जाने की जरूरत है कुछ नहीं, घर बैठे कर सकते हो। आप लगा दो वीडियो, 45 मिनट्स का है, धीरे 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 करो। देखो मेरे पास समय कम है, नहीं तो दिखाता वीडियो क्लिप्स, लेकिन धीरे धीरे पहले स्लोली स्टार्ट करो, धीरे 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 बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि आज ही नशा चढ़ गया, आज ही आधा घंटा चल दिए, दूसरा दिन फाँव के गिर पड़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। 5 मिनट से शुरू करो, धीरे धीरे डिस्टेंस भी बढ़ाओ, धीरे 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 धीरे, जो कभी जिंदगी में नहीं किया ऐसा नहीं करना है। क्यों कह रहा हूं, मैं बचपन में दौड़ता था, मेरे ग्रैंडफादर मुझे खूब पीटे करते, जहां दौड़, तो मेरे एकदम फिट था बचपन से भी। तो मेरा एक फ्रेंड था बहुत दुबला पतला, तो एक दिन कहता है तू क्या करता है यार, बोला रोज दौड़ता हूं मेरे दादा के साथ, हम चने भिगाते हैं खाते हैं। तो बोला कि अच्छा मैं आऊं आपके साथ, मैं क्या आ जा। तो नेक्स्ट डे मेरे साथ आया, पूरा 5 किलोमीटर नेशनल हाईवे में दौड़ लिया। नेक्स्ट डे फिर आया नहीं, नेक्स्ट डे भी नहीं आया, 3-4 दिन आया नहीं। तो मैं सोचा क्या हुआ, उनके घर में गया, जाके देखा तो खटिया में लेटा है। मैं बोला क्या हुआ भाई, बोला इतना चना खा गया भाई डायरिया हो गया, जिंदगी में कभी चना नहीं खाया, एक दिन पहला दिन इतना खा गया और दोनों घुटना लाल लाल होके फूल गया, इतना पहला दिन एकदम 5 किलोमीटर दौड़ दिया। ऐसा नहीं करना है, स्लोली ऑलवेज कंसल्ट द डॉक्टर। एंड क्या करना है, वास्तव में जो डेली एक्सरसाइज करता है उसका शुगर, उसका ब्लड प्रेशर, उसका कोलेस्ट्रॉल सब ठीक हो जाता है। उसका ब्लड प्रेशर की दवाई, डायबिटीज की दवाई सब कम हो जाता है। और क्या होता है, उसका वेट सस्टेन होता है, एकदम आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करता है, और उसके और कोई भी स्वास्थ्य की समस्या नहीं होगी, और उसको एनर्जेटिक लगेगा, अच्छा नींद। लोग कहते हैं क्या करें डॉक्टर साहब, रात भर नींद नहीं आती, हम तारे गिनते रहते, हिलना नहीं है, डुलना नहीं है। हमारे देश में थोड़ा सा लोगों के पास पैसा हो जाओ, देखो बस बन जाते हैं सेठ सेठानी। विदेश में जाओ, लोग लेटरिन साफ करने से लेकर कार साफ करने से सब कुछ खुद करते हैं, गार्डनिंग से लेकर सब। हमारे देश में बिल्कुल नहीं, बैठे रहेंगे, कोई पानी लाएगा तो पिएंगे, फोन बजता रहेगा, कोई ला के देगा तो उठाएंगे, इसके कारण बीमारी। अरे कुछ तो करो, मेहनत करो तो ही जाके नींद आएगी ना, कैसे नींद आएगी नहीं तो। और क्या होता है, जो डेली एक्सरसाइज करेगा उसका टेंशन खत्म हो जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज से ब्रेन से हमारे पास बहुत सुंदर एंडोर्फिन सीक्रेट होते हैं जो स्ट्रेस को रिलीव करते हैं, स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन्स, और इट एनहांसेस द फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी एकदम लचीला हो जाता है। आप कभी भी गिरेंगे देखना, माताएं जरा सा ऐसा हो जाता है गिर पड़ते हैं फ्रैक्चर नहीं, बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएगा और आपके मसल्स बोन सारा स्ट्रांग हो जाएगा, कभी भी ये सब चीजें नहीं आएगी समस्या। परंतु एक्सरसाइज इज ए लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, आप कितने सालों से भी कर रहे हो, दो चार दिन बंद कर देंगे तो एक्सरसाइज से जो बेनिफिट है खत्म। इसलिए जब तक जीना है एक्सरसाइज करना है। जैसे गाड़ी को आप चुपचाप खाली गैरेज में रखे नहीं रहते हो, डेली थोड़ा सा ही ड्राइव करके घुमा के ले आते हो। तो WHO का कहना है, कोई अगर पांच दिन भी हफ्ते में थोड़ा सा वॉकिंग करता है और थोड़ा सा वार्म अप स्ट्रेचिंग करता है तो ही जीवन में वो सदा हेल्दी रहता है। जो कहता है, एक्सक्यूज करता रहता है कि नहीं फुर्सत नहीं है, जिसको एक्सरसाइज करने के लिए फुर्सत नहीं मिलता है, हॉस्पिटल में एडमिट होकर ट्रीटमेंट होने के लिए जरूर फुर्सत मिलेगा। तो इसलिए डॉक्टर पूछता है, तुमको क्या पसंद है, क्या एक घंटा डेली एक्सरसाइज करो और चुस्त फुर्त रहो वो पसंद है, कि बिना एक्सरसाइज करके मुर्दे जैसा रहो सारा दिन 24 घंटा वो पसंद है, क्या पसंद है? परंतु ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर, ये करना चाहिए कि नहीं? कोई बहुत मोटा है और खाली चलेगा तो कैसे उसका वेट कम होगा? थोड़ा तो कुछ मेहनत करना पड़ेगा ना। नहीं, जो सोचते हैं ऐसा करना चाहिए हाथ उठाओ। हाँ, वेरी गुड। जो सोचते हैं ये नहीं करना चाहिए हाथ उठाओ। तो बाकी बीच में क्या सोच रहे हैं सभी? वास्तव में नहीं करना चाहिए। ऐसे ही एक लेडी मेरे पास आई थी पैर फ्रैक्चर करके, मैं बोला कि क्या हुआ, कहते क्या बताऊं, एक नेचुरोपैथी वाला आया, बोला कि बहन जी पतला होना बहुत आसान है, आप एक जो बच्चे कूदते हैं रस्सी कूदा जो स्कीपिंग रोप एक ले आओ, सवेरे 10-15 मिनट छलांग लगाओ, शाम को देखना एकदम स्लिम हो जाओगे 2-3 महीने में। ले तो आई एक रस्सी, पहला दिन ही एक छलांग, दूसरी छलांग, तीसरी बार ऐसा हो गया, गिर पड़ी, फ्रैक्चर, 1.5 महीना तक प्लास्टर करके खटिया में लेटी रही, 10 किलो वजन बढ़ गया। तो ये डॉक्टर को बिना पूछे ये सब नहीं करना है। एक सिंपल आपको क्वेश्चन पूछता हूं, जब सतयुग था लक्ष्मी नारायण को देखो कितना सुंदर एकदम फिट बॉडी, देखो राम सीता को, जब त्रेता युग था हमारे देश में राम सीता थे, कैसा सुंदर एकदम तन, कौन सा जिमखाना में जाते थे, कौन सा हेल्थ क्लब में जाते थे, कौन सा मुर्गासन बकरीसन करते थे, अनुलोम विलोम कपालभाति करते थे, क्या करते थे, क्या करते थे? आप सभी कलाकार हो इसलिए पूछ रहा हूं। देखिए जब द्वापर युग आया हम सभी फिर भी हेल्दी थे, क्योंकि द्वापर युग में भी खेती बाड़ी भागम दौड़ी, देखो कुआं से पानी निकालना ये करना सब कुछ करते थे, हम हेल्दी थे। कलयुग आया तो ऐसा हो गए, भाई लोग खुश हो रहे, खाली माताएं शायद ऐसे हो गए, नहीं नहीं भाई लोग भी ऐसे हो गए। आज अमेरिका जाओ 500 किलो 600 किलो के लोग आपको मिलेंगे, खाली जंक फूड फास्ट फूड कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, रिमोट कंट्रोल में सब काम हो रहा है, हिलना नहीं है डुलना नहीं है, क्या हाल होगा आप सोचो। और हमारे देश में हमारे बच्चे भी ऐसे हो गए हैं, ये राजस्थान का एक बच्चा है अखबार में आया था, क्या हाल हो गया है। और सबसे बड़ी बात है हमारे पुलिसमैन कैसे हैं देख लो, जो सबसे फिट होना चाहिए कैसे हालत है देख लो। किसने पूछा है कि क्या कर रहे हैं, मैं बोला बात तो कर रहे हैं लेकिन मुंह से बात नहीं कर रहे हैं। और ये देखिए 90s में हमारा टेलीविजन और कंप्यूटर तो ऐसा था, हम लोग ऐसे थे, और 2014 में हमारा टेलीविजन कंप्यूटर ऐसा हो गया, हम लोग ऐसे बन गए। तो कहने का मतलब है, कोई व्यक्ति अगर 10 किलो भी अपना वजन घटा देता है, अगर मोटू है 10 किलो घटा देता है, अगर 10 किलो बढ़ जाता है तो उसके हार्ट बेचारा को 1000 लीटर एक दिन में खून एक्स्ट्रा पंप करना पड़ता है। तो अगर 10 किलो घटा देगा तो हार्ट को कितना वर्कलोड कम होता है, आप सोचिए। हम कहते हैं जरा सा चलने से डॉक्टर साहब नहीं होगा, बेचारा हार्ट कहां से पंप कर पाएगा। और भगवान कहते हैं मेरे बच्चे तुमको तो सतयुग में त्रेता युग में कैसे एक मंदिर में पूजने लायक तुम्हारा तन देखे गया था, शरीर देखे गया था, तुम इसको तेल घी का गोदाम बना के रखे हो। तो ये सब चर्बी हमारे नुकसान कर रहा है, इसलिए कीप फिट विथ म्यूजिक। देखो सतयुग त्रेता युग में क्यों हेल्दी थे, क्या करते थे, सभी रास करते थे। आज भी डॉक्टर्स कहते हैं डांस इज द बेस्ट एक्सरसाइज, बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। हमारे भारतीय संगीत के साथ वो विदेशी जैसा, वो कुत्ता, पागल कुत्ता को जैसे पिला दो कुछ ना, जैसा डांस करेगा वो कोई डांस है? तो विदेशी डांस नहीं कह रहा हूं, हमारी भारतीय संस्कृति जैसा कल्चर, इतना सुंदर डांस। मैं यहां एक दिन देख रहा था, कुछ साल पहले हमारे हॉस्पिटल का कोई सेलिब्रेशन था, अहमदाबाद डांस क्लब से एक बच्चे आए थे छोटे छोटे, यहां रिहर्सल हो रहा था, मैं ऑडियंस में उधर बैठ के खाली देख रहा था। इतना सुंदर संगीत और हर जॉइंट, हर बॉडी का ऐसा मोबिलाइज हो रहा है संगीत के साथ, सचमुच कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं। और इतना सात्विक, इतना कोई मन में कोई ऐसी भावना भी नहीं आएगी, वो गीत के शब्द भी इतना सुंदर, इतना बढ़िया। हमारे देश की संस्कृति यही थी दोस्तों। आज विदेशी लोगों के साथ क्या बजता है, ढूंढ डाम क्या क्या करते हैं, क्या क्या पोस्चर आप देखो तो सारा गंध एकदम। तो हम सब बिगाड़ दिए हैं हमारी संस्कृति को। तो इसलिए देखो, जब गीत बजता है तो एक छोटा बच्चा भी डांस करता है, बुढ़े भी डांस करना शुरू कर देते हैं, बुढ़ी माताएं भी डांस करना शुरू कर देते हैं। अरे मनुष्य तो क्या, जीन पैंट पहन के मैदान में आ जाता है, हाथी भी, जानवर भी, पशु पंछी भी सब डांस करना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब है कि जीवन में अगर सदा स्वस्थ रहना चाहते हो तो तीन बातें, मेडिटेशन फॉर स्ट्रेस रिलीविंग, बैलेंस्ड एंड वेजिटेरियन डाइट, एंड फिजिकली एक्टिव लाइफ एंड एक्सरसाइजेस। मैं आपको सार रूप में टेक होम मैसेज सुना देता हूं क्या क्या करना है। मेडिटेट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, सारी बातें भी भूल जाए तो ये कम से कम याद रखिए। ईट मॉडरेट, आकंठ भोजन नहीं करना है जैसे आग्रह सारा हवा निकल जाए। ईट मॉडरेट, गो वेजिटेरियन, मनुष्य एक शाकाहारी प्राणी है, इसमें आप पेट्रोल गाड़ी खरीदे अगर केरोसिन और डीजल डालना चाहते हो तो आपकी मर्जी, आपकी इच्छा। और ड्रिंक एडिक्वेट वाटर, रोज कम से कम 2-3 लीटर पानी पीना चाहिए तो ही आप हेल्दी रहेंगे। और साथ साथ ईट अर्ली एंड स्लीप अर्ली, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। तो 10 बजे तक सो जाना चाहिए, हमारे यहां दिनचर्या में आपको भी बताया गया होगा, 10:30 तक सो जाना चाहिए और सवेरे 4 बजे तक। डॉक्टर्स कहते हैं, आज बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च स्टडीज मेरे एविडेंसेस है मेरे पास, रात को 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक जो समय है, उस समय जो सोता है उसके अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो बहुत कम सिक्रेट होते हैं। जो इसी समय जागता है उसका स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो हार्ट अटैक से लेके, हाई बीपी से लेके, डायबिटीज से लेके सारी बीमारियां करती। तो इसलिए ईट अर्ली एंड स्लीप अर्ली एंड अवॉइड फास्ट फूड। ये सब जंक फूड, फास्ट फूड ही वास्तव में हमारे समाज को बिगाड़ के रखे हैं, हमारे बच्चे। आप अगर अपने बच्चों को सुधारना चाहते हो, प्लीज, पेरेंट्स आर द रोल मॉडल फॉर दिस चिल्ड्रेन। आप जैसे जो खाएंगे, अगर मां बाप ही 8 बजे उठते हैं तो बच्चे कितने बजे उठेंगे? आप अगर जंक फूड खा रहे हो तो बच्चे तो ऑटोमेटिक खाएंगे। तो आप जैसा चाहो ऐसा सिखाओ अपने बच्चों को, वो कल्चर बनाओ। हमारी भारतीय संस्कृति खो दिए हैं हम, जिसके कारण बीमार हैं हम। पाश्चात्य सभ्यता को अंधानुकरण करते करते यही दुर्गति आज है, घर घर में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये बीमारियां हमारे देश में थी नहीं। तो इसलिए अवॉइड जंक फूड एंड से नो टू एडिक्शंस। कोई भी नशीली चीजें ये टच नहीं करना है, यही सर्वनाश करा देता है। एंड डू यू रियली वॉन्ट टू बी हेल्दी? सचमुच? यस, देन माई सिंसियर एडवाइस इज प्रैक्टिस राजयोगा मेडिटेशन रेगुलरली। एंड लास्ट एंड नॉट द लिस्ट, लैफ्टर इज एन एंटीडोट फॉर ऑल द डिजीज। मुस्कुराना जीवन में सबसे बहुत बढ़िया दवाई है। आप, मुस्कुराना आता है आप सभी को? आता है? एक छोटा बच्चा जन्मते, आप देखना, 1 महीना का होगा, उसके आसपास में कोई नहीं होंगे, माताएं सब अनुभवी होंगे, दिन में 250 बार मुस्कुराता है, 250 बार। हम कितने बार मुस्कुराते हैं? हम कितने बार मुस्कुराते हैं? 250 बार भी नहीं होता होगा शायद, क्योंकि जब जैसे हम बड़े हो जाते हैं हमारे अंदर एक भूत सवार हो जाता है, मैं कहूंगा जीवन में कितने भी डिग्रियां ले लिए हो, कितना भी धन संपत्ति कमा लिए हो, कितने भी गाड़ी मोटर हो, अगर आप सभी, हम सभी मुस्कुराना नहीं सीखा है जिंदगी में दोस्तों, कुछ भी नहीं सीखा है, कुछ भी नहीं सीखा, सब बेकार है। मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मुस्कुराओ, जब भी मौका मिलता है मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कुराने से सारी बीमारी ठीक हो जाती है। देखो हमारे देश में लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता, कोई भी देवी देवताओं का चित्र ले लो, देखो उनके चेहरा कैसा खिला हुआ, और हम एकदम जैसे कि चमन खो दिए चेहरा, इतना सीरियस है कि बात मत पूछो, सारी दुनिया का बोझ जैसे ढो के रखे। अरे मुस्कुराओ, सबसे श्रेष्ठ कला मैं कहूंगा मुस्कुराना। जो मुस्कुराना सीख गया तो नेक्स्ट कला है हेल्दी रहने का कला, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसलिए अभी हमारे पास एक भाई हैं, आएंगे भाई जी, विकास भाई, अच्छा सामने बैठे हो, मैं देख रहा हूं, आइए, एक बहुत सुंदर गीत गाएंगे और वो गीत के साथ हम सभी थोड़ा मुस्कुराएंगे, मुस्कुराएंगे और ताली का सहयोग देंगे। तो गीत के साथ बहुत सुंदर, और जो मैं एक्सरसाइज सिखाता हूं, जिसको होलिस्टिक एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूं, आप इसका सीडी भी मिलता है, आप ले सकते हो काउंटर से, उसमें बहुत सुंदर आप घर बैठे सो सिंपल आप कर सकते हो। अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं करके दिखाता, 5 मिनट में यू विल बी टोटली रिजुविनेटेड। अभी सभी खड़े हो जाए, बहुत सुंदर गीत गाएंगे भाई जी, वो गीत के साथ हम सभी थोड़ा सा मुस्कुराएंगे। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
हेलो माइक टेस्ट।
गीत के साथ सभी ताली बजाएंगे, थोड़ा सा खुश रहेंगे, देखना सब बीमारियां बाहर, जिसको भी जो बीमारी है यहां छोड़ के जाना है। अभी तो ताली बजाओ, ताली तो बजाओ, ताली बजाना सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है, पूरा बॉडी का एक्सप्रेशन हो जाता है।
जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। में घर ना खिले सो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इस हर दिल को गाना पड़ेगा। तारों भरी ना मिली तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इस हर दिल को गाना पड़ेगा। एक वचन भी तो है जिसे सबको निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा।
बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बधाई हो, सभी सदा स्वस्थ रहिए, यही मेरी शुभकामना है आप सभी के लिए। यही सर्वश्रेष्ठ कला है दोस्तों, जीवन में अगर स्वस्थ नहीं तो और क्या चाहिए, जीवन में और क्या फायदा है। तो जीवन में सदा स्वस्थ कैसे रहें, आध्यात्मिक स्वस्थ जीवन शैली यहाँ के सीख के जाइए। देखिए फिजिकली मेंटली सोशली आप हर रीति से स्वस्थ रहेंगे, यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा वो सुनना चाहते हैं, एक एक अभी पांच मिनट कर सकते हैं एक्सरसाइज, बैठे सभी एक मिनट। उसके पहले मेरा बाबा, वो मेरा बाबा, देखिए एक मिनट थोड़ा, मैं जो एक्सरसाइज सिखाऊंगा ये बैठे बैठे घर में कर सकते हैं आप सभी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जहां भी बैठे हैं थोड़ा सा आगे बैठिए, कुर्सी में आधे कुर्सी में बैठिए, पूरा कुर्सी में नहीं, थोड़ा सा आधा हाफ कुर्सी में। और ये हाथ में, हाथ द्वारा आप सारे शरीर को थपकी लगाएंगे, इसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। ये एक एक्यूप्रेशर थेरापी है, होल बॉडी का बॉडी मसाज है, जिसमें देखना आपका टांग दर्द घुटना दर्द सब गायब, पांच मिनट में यू विल बी रिजुविनेटेड। तो बॉडी में हम थपकी लगाएंगे, बहुत जोर से थपकी नहीं लगाना क्योंकि लाल हो जाएगा, फिर इतना धीरे धीरे भी नहीं कि मच्छर भी ना मरे, थोड़ा मीडियम स्टार्ट। हाँ जूते निकाल दीजिए सभी, हाँ स्टार्ट। वन टू वन वन टू वन टू वन टू
मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ज्ञान की राहें दिखलाता, आत्मदीपों को है जलाता, पावन वो बनाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है।
यहाँ दान के नीचे हे नबी, रुकने के ऊपर एक दो रिद्धिकली अभी चेंज, अभी घुटने के नीचे।
दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर, दिल में अपने बसाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है।
एक दो, एक दो, एक दो, चेंज अभी तलों में, अच्छे तरह से हमारे तलों में सारा दर्द मिट जाएगा।
पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले,
चेंज अभी दूसरे पाओ।
पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले, ले पतवार हाथों में बाबा, ले पतवार हाथों में बाबा, मंदिर तक ले जाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है।
ऐसे ऊपर उठेगा, ऐसे उठेगा, तेज अभी पीछे पीछे, ऐसे ये भी हाथ उठेगा, ऐसे तेज अभी।
हमें रंग है देता
नाभि के ऊपर, नाभि के नीचे,
हमें रंग वो देता
नाभि के ऊपर, नाभि के नीचे, साथ में नहीं, पेट में।
खुशियों के हमें रंग है देता, चीन का हमें रंग वो देता, मानव से वो देव बनाकर, मानव से वो देव बना, धरती पर स्वर्ग सजाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है,
लक्ष्य कदम, लक्ष्य कदम, लक्ष्य कदम। एक दो, 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 एक दो उसका सबका बाबा हमारे देश में बहुत कोई खुश होता है तो वो ऐसा खगी मारता था तो पहले जमाने में तो अभी एक सुंदर गीत बजेगा हम खगी मारेंगे ठीक है इसका उसका सबका बाबा नेक्स्ट 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 मैं बताता हूं यस बाहों में हिलेगा सभी ऐसे 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 ऐसे
मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा 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 इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा मेरा प्यारा बाबा दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो धरती पे पधारा आओ मेरे लाड लो बच्चे कह के पुकारा इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा मेरा प्यारा बाबा मिला जीवन का जिंदगी मुस्काई खुश नसीब हम भाग्यवान जो गोद प्रभु की पाई पल घूमे बाबा तेरा नजारा
इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा मेरा प्यारा बाबा
इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा मेरा प्यारा बाबा
शांति थक जाएंगे पहला दिन ही है ओम शांति देखिए ये सारे शरीर को आप कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब तो हमारे सारे शरीर को पिटाई कर दिए वास्तव में हम जो बहुत समय बैठे रहते हैं हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत धीमी हो जाता है स्लगिश हो जाता है जिसके कारण हमारे बॉडी से जो गंदगी है इन्फ्लेमेटरी मटेरियल से वो बाहर निकलता नहीं है पसीने से पिशाब से सांस से जमा होकर रहता है जिसके कारण यहां दर्द यहां दर्द यहां दर्द तो जब बॉडी को पूरा सारा शरीर थपकाते हो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है एक प्रकार का एक्यूप्रेशर हो जाता है एक प्रकार का बॉडी मसाज हो जाता है जिससे सारे दर्द पांच दिन में लोगों के सारे दर्द खत्म, ये पूरा हाथ हाथ सब खुल जाता है, एकदम स्वस्थ हो जाएंगे।